Dear brothers, I'm very happy to see you all.
प्रिय भाइयों, मैं बहुत खुश हूँ आप सबको देखकर.
To speak to you today.
और आपसे आज बात करने के लिए.
It's a great privilege and honor to be able to serve the Lord Jesus Christ.
प्रभु यीशु मसीह की सेवा करना एक बहुत बड़ा सौभाग्य और एक आदर की बात है.
And we have to take that very seriously, more seriously than anything else in our life.
और हमें इसको बहुत गंभीरता से लेना है. हमारे जीवन के और किसी भी बात से अधिक गंभीरता से हमें इसको लेना है.
More seriously than if you had the most important job in your country.
आपके राज्य के सबसे महत्वपूर्ण नौकरी भी अगर आपकी होती तो उससे भी अधिक ये जरूरी है.
I don't know whether you realize that to be a servant of the Lord is a far greater position than even being the prime minister or president of your country.
मैं नहीं जानता आप इस बात को समझते हो या नहीं कि परमेश्वर का एक सेवक होना ये एक ज्यादा बड़ा एक महान पद है आपके देश का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री होने से भी ज्यादा बड़ा.
And if every elder recognized that, there would be a tremendous difference in their ministry.
और अगर हर एक अगुआ हर एक प्राचीन इस बात को समझ जाता तो उनके सेवकाई में एक बहुत बड़ी भिन्नता एक बहुत बड़ा फर्क आ जाता.
So that's the first thing I would like to say.
और ये पहली बात है जो मैं कहना चाहूंगा.
And then, as a servant of the Lord, we have to make sure that, just like we train our children, we are like spiritual fathers to the people we lead.
और फिर प्रभु के सेवक होने के नाते जैसे हम अपने बच्चों को बढ़ाते हैं उनको प्रशिक्षित करते हैं हमें भी अपने आत्मिक तौर पर हमारे बच्चों को प्रशिक्षित करना है.
Now we know that many, many children of Christian leaders and pastors are a very poor testimony.
हम जानते हैं कई मसीही सेवक और मसीही पास्टर्स जो है उनके जो बच्चे हैं वो प्रभु के लिए बहुत बुरी गवाही है.
And the Bible says in 1 Timothy 3 that you are unfit to be an elder if you have not brought up your own children properly in your own house.
और बाइबल पहले तिमोथियुस उसके तीसरे अध्याय में बताती है कि आप एक प्राचीन होने के बिल्कुल अयोग्य हो अगर आपने अपने ही घर में अपने बच्चों को सही तरीके से बड़ा न किया हो तो.
Because if you can't bring up 2-3 children in your own house, how are you going to bring up 10 believers in a church?
क्योंकि अगर आप 2-3 बच्चों को अपने ही घर में सही से बड़ा नहीं कर सकते तो आप 10 विश्वासियों को एक कलीसिया में कैसे बढ़ाओगे.
So we have to take that also very seriously.
और इसलिए हमें इस बात को भी बहुत गंभीरता से लेना है.
Paul told Timothy in 1 Timothy 3 that you must not appoint any such person as an elder who has not brought up his children properly.
Paulus ne Timotheus ko pehle Timotheus uske teesre adhyay mein bataya ki aapko aise kisi bhi vyakti ko prachin nahi rakhna hai jo jisne apne bachchon ko sahi tarike se bada na kiya ho.
That is like saying that if a child is failing in the kindergarten, how can you send him to college?
Aur ye bilkul is prakar hai ki agar ek bachcha apne balwadi mein hi bar bar फेल हो जाता है तो आप उसको कैसे कॉलेज में भेज सकते हो.
वी कैन टीच ओनली व्हाट वी हैव प्रैक्टिस्ड.
हम दूसरों को वही सिखा सकते हैं जो हमने अपने जीवन में किया है.
आई वॉन्ट यू टू सी अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्स इन एक्ट्स चैप्टर 1:1.
मैं चाहता हूं कि आप बहुत जरूरी एक वचन को देखें जो प्रेरितों के काम उसके पहले अध्याय के पहले वचन में है.
लूक वॉज द वन हू रोट The Acts of the Apostles.
लूक ने प्रेरितों के काम लिखे.
And he wrote the Gospel of Luke also.
और उसने लूका रचित सुसमाचार भी लिखा.
And he is referring to the Gospel of Luke in the first verse here.
और पहले वचन में वो लूका रचित सुसमाचार का एक संदर्भ देता है.
So how does he describe the Gospel of Luke?
फिर लूका रचित सुसमाचार उसका वो कैसे वर्णन करता है.
We can describe the Gospel of Luke with our terms, but Luke himself calls it this.
हम अपनी भाषा में लूका रचित सुसमाचार का वर्णन कर सकते हैं पर लूका उसको ये कहता है.
He says, what I wrote first is about all that Jesus began to do and teach.
वो कहता है मैंने जो पहले लिखा वो जो कुछ यीशु आरंभ से करता और सिखाता रहा उसके विषय में था।
So we said, Brother Luke, what are you writing now in Acts of the Apostles?
और फिर हम उससे पूछते हैं भाई लूक आप अब प्रेरितों के काम में क्या लिखते हो?
Yes, all that Jesus continued to do and teach through his new body, the church.
जो कुछ यीशु मसीह करता रहा और फिर सिखाता रहा उसकी नई देह के द्वारा जो है कलीसिया।
First he did it in his physical body on earth for 33 and a half years.
पहले उसने अपने शारीरिक शरीर में 33.5 वर्ष को उसको इस पृथ्वी पर किया।
So we can say the Acts of the Apostles is all that Jesus continued to do and teach through his body, the church.
फिर हम कह सकते हैं प्रेरितों का काम वो है जो यीशु मसीह करता रहा और सिखाता रहा उसके शरीर अर्थात कलीसिया के द्वारा।
And he's been doing that for 2000 years.
और अब वो 2000 वर्षों से ये कर रहा है।
So our calling as elders is to allow the Lord Jesus to continue to do and teach through our members of our church what he began to do when he was on earth.
और हम जो प्राचीन हैं, हमारी बुलाहट ये है कि हम हमारे द्वारा परमेश्वर को प्रभु यीशु मसीह को उस काम को करने दे जो उसने अपने शरीर के साथ करना शुरू किया था।
That means we ourselves have to do it first.
इसका मतलब सबसे पहले हमें उसको करना है।
Because it says here, not that Jesus taught and did, but that he did and then taught.
क्योंकि यहाँ ये नहीं लिखा कि यीशु मसीह ने सिखाया फिर किया, बल्कि ये लिखा है कि यीशु मसीह ने किया और फिर सिखाया।
There is a saying in the world, practice what you preach.
और इस संसार में एक कहावत है कि आप जिस बात का प्रचार करते हो वो अपने जीवन में खुद करो।
But that's not what Jesus did.
पर यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया।
He first practiced, then preached.
उसने पहले अपने जीवन में उसको किया और फिर ही उसका प्रचार किया।
So it is not practice what you preach.
और वो ये नहीं था कि जो प्रचार करते हो वो करो।
No, he says first practice and then preach.
वो कहता है नहीं, पहले तुम करो और फिर प्रचार करो।
Other words, preach only what you have already practiced.
दूसरे शब्दों में बस वही प्रचार करो जो तुमने अपने व्यवहार में लागू किया है।
See, a second standard student can teach a kindergarten student.
एक दूसरी कक्षा का विद्यार्थी एक बालवाड़ी के विद्यार्थी को पढ़ा सकता है।
Because he's already passed that class.
क्योंकि वो बालवाड़ी पास करके आगे आया है।
But he cannot teach a fourth standard student because that is beyond him.
पर वो चौथी कक्षा के विद्यार्थी को नहीं सिखा सकता क्योंकि वो उसके उससे बड़ा है।
So he can only teach what he's already learned and practiced.
और इसलिए सिर्फ वो वही सिखा सकता है जो उसने सीखा है और अपने व्यवहार में लाया है।
This is such a simple principle in school, but we forget it in the church.
ये एक स्कूल में तो बहुत साधारण सिद्धांत है पर कलीसिया में हम इसको भूल जाते हैं।
So, generally speaking, we find the emphasis in Christianity is that elders must be good preachers.
और आम तौर पर हम मसीहत में पाते हैं कि जोर इस बात पर दिया जाता है कि कलीसिया के प्राचीनों को अच्छा प्रचारक होना है।
But throughout history, there have been some brothers who are not good preachers who have done a wonderful work for God.
पर पूरे इतिहास में ऐसे कई लोग रहे हैं जो बिल्कुल अच्छे प्रचारक नहीं थे पर उन्होंने परमेश्वर के लिए एक अद्भुत काम पूरा किया।
Because they followed Jesus.
क्योंकि वो यीशु मसीह के पीछे चलते थे।
See, the Apostle Paul said in 1 Corinthians in chapter 11.
प्रेरित पौलुस ने पहले कुरिन्थियों उसके 11वें अध्याय में कहा,
Follow me just as I follow Christ.
तुम मेरा अनुसरण करो, मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूं।
In the Bible, if you read right from Genesis onwards, nobody said follow me until Jesus came.
अगर आप बाइबल में पढ़े उत्पत्ति से लेकर बाइबल में किसी ने भी ये नहीं कहा मेरे पीछे आओ जब तक कि यीशु मसीह नहीं आया।
The first person in the Bible who said follow me was Jesus.
बाइबल का पहला व्यक्ति जिसने कहा मेरे पीछे आओ वो था यीशु।
All the preachers before that could only say, listen to me, I'm giving you God's message.
उसके पहले सारे प्रचारक बस इतना ही कह सकते थे, मेरी सुनो, मैं आपको परमेश्वर का संदेश दे रहा हूँ।
Noah was one of the greatest preachers in the beginning.
नूह एक बहुत बड़ा प्रचारक था आरंभ में।
But he could not say, follow me, when he, God blessed him, he got drunk and lay naked in the tent.
पर वो ये नहीं कह सका मेरे पीछे आओ क्योंकि जब परमेश्वर ने उसको आशीष दिया तो वो उस द्राक्षरस को पीकर नंगा हो गया उसके तंबू में.
It's not a good example.
ये अच्छा उदाहरण नहीं है.
So he has to say, listen to what I say. God is going to judge the world, but don't follow my example.
और इसलिए उसको कहना पड़ा कि ये सुनो मैं क्या कह रहा हूं, परमेश्वर इस संसार का न्याय करेगा पर मेरे उदाहरण के पीछे मत चलो.
The same with Moses.
मूसा के साथ भी वही था.
When you read about Moses, you find him fighting with his wife.
जब हम मूसा के बारे में पढ़ते हैं हम पाते हैं कि वो अपने पत्नी से लड़ता था.
The Exodus 4.
निर्गमन उसके चौथे अध्याय में.
And he did not circumcise his child, his grown-up son, according to God's word.
और अपने बड़े हुए बेटे का भी उसने खतना नहीं किया परमेश्वर के वचन के अनुसार जो था.
Because his wife said no.
क्योंकि उसने उसके पत्नी ने मना कर दिया.
But Moses was the greatest prophet in Israel.
पर इसराइल में सबसे बड़ा नबी मूसा था.
He also has to say, don't follow my example, but listen to what I'm saying. It is from God.
और इसलिए मूसा को भी कहना पड़ेगा कि मेरे उदाहरण के अनुसरण पर मत चलो पर परमेश्वर की वाणी सुनो.
Samuel was the other great prophet in the Old Testament.
शमूएल ये दूसरा बड़ा नबी था पुराने नियम में.
And he also, he says, don't follow my example. My sons grew up and became corrupt leaders who took bribes from people.
और शमूएल को भी कहना पड़ा कि मेरे उदाहरण पे मत चलो क्योंकि मेरे बेटे बड़े होकर भ्रष्ट हो गए और लोगों से इसराइल के लोगों से रिश्वत लेने लगे.
And even the high priest Aaron was a bad example because his children dishonored the Lord and God killed them.
और महायाजक हारून जो था उसको भी वो भी एक बुरा उदाहरण था क्योंकि उसके बच्चों ने परमेश्वर की निरादर करके परमेश्वर ने उनको मार डाला.
But they could still be leaders because under the old covenant their family life was not important.
पर इसके बावजूद भी वो अगुवे हो सकते थे क्योंकि पुराने नियम में उनका पारिवारिक जीवन जरूरी नहीं था.
And we know the great example of David.
और हम अच्छा उदाहरण जानते हैं दाऊद का.
He couldn't say, follow me. He says, I've married 8 wives. Don't follow my example.
वो नहीं कह सकता था मेरे पीछे आओ क्योंकि उसने 8 स्त्रियों से विवाह किया था.
But I've written numerous psalms. Read them and praise God.
पर मैंने कई भजन लिखे हैं, उनको पढ़े और परमेश्वर की स्तुति करे.
What did David say? Don't follow my example, but read what I say. It is from the Holy Spirit.
और इसलिए दाऊद क्या कहता है, मेरे उदाहरण को मत देखो पर जो मैंने लिखा है उसको पढ़ो, वो पवित्र आत्मा द्वारा है.
Very rare to find a man in the Old Testament whose life backed up what he said.
ये बहुत ही कम पाया जाता था पुराने नियम में एक ऐसा मनुष्य जिसका जीवन उसके प्रचार से मेल खाता हो.
Jeremiah was an amazing preacher for more than 40 years faithfully proclaiming the word.
यिर्मयाह एक अद्भुत प्रचारक था, 40 वर्षों से अधिक विश्वास योग्यता से प्रभु का वचन वो बोलता था.
But when one woman, Jezebel, threatened him, he ran away scared in the wilderness and said, Lord, take away my life.
पर जब एक स्त्री इजेबेल ने उसको धमकी दी तो वो डर कर भाग गया और कहने लगा, परमेश्वर मेरे जीवन को तू ले ले.
So where do we find an example to follow in the Old Testament?
और इसलिए कहां हम एक उदाहरण पाते हैं जिसके पीछे हम चल सकते हैं पुराने नियम में,
Especially in the family life.
विशेषकर पारिवारिक जीवन में.
Many other areas, some of these people were wonderful people.
दूसरे कई क्षेत्रों में इनमें से कुछ लोग बहुत अद्भुत लोग थे.
So the first person who could say follow me was Jesus.
और इसलिए पहला व्यक्ति जो कह सकता था मेरे पीछे आओ वो था यीशु.
And he practiced for 30 years before he preached for the next 3.5 years.
और उसने 30 वर्षों तक एक जीवन जिया और उसके बाद 3.5 वर्ष उसने प्रचार किया.
So his life covered 33.5 years and his preaching only 10% of that, 3.5 years.
और उसका जीवन जो था वो 33.5 वर्ष का था पर उसका प्रचार जो था उसका सिर्फ 10% 3.5 वर्ष ही था.
This is a very important principle for us to bear in mind.
ये एक बहुत जरूरी सिद्धांत है जिसको हमें याद रखना है.
Jesus did and then taught.
यीशु ने पहले किया फिर सिखाया.
So we must not concentrate on preaching first but on doing.
और इसलिए हमें अपना ध्यान पहले प्रचार पर नहीं बल्कि उसको करने पर लगाना है.
I wish I could say that to every single preacher in the world.
काश मैं संसार के हर प्रचारक को ये बात कह सकता.
First do, then teach.
पहले करो फिर सिखाओ.
It's not that you must be perfect. Nobody is perfect.
ये नहीं कि आपको सिद्ध होना है, कोई भी सिद्ध नहीं है.
What did Paul mean when he said, follow me as I follow Christ?
पौलुस का क्या मतलब था जब वो कहता था मेरे पीछे चलो जैसे मैं यीशु के पीछे चलता हूँ?
He himself says in Philippians 3, I'm not perfect.
वो खुद फिलिपियो उसके 3 अध्याय में कहता है कि मैं सिद्ध नहीं हूं.
I'm still pressing towards the mark.
वो कहता है मैं सिद्धता की ओर बढ़ते जाता हूं.
So he was not claiming that I'm perfect, therefore you can follow me.
और इसलिए वो ये नहीं कह रहा था कि मैं सिद्ध हूं इसलिए मेरे पीछे चलो.
बट बेसिकली ही वॉज नॉट लिविंग फॉर हिमसेल्फ और फॉर एनी अर्थली गेन.
पर मूलभूत तौर पर वो अपने आप के लिए नहीं जी रहा था या इस पृथ्वी के किसी लाभ के लिए वो नहीं जी रहा था.
वर्ड्स हिज मोटिव वॉज परफेक्ट.
दूसरे शब्दों में उसका उद्देश्य, उसका मकसद जो था वो सिद्ध था.
ही वॉन्टेड टू ग्लोरिफाई गॉड इन हिज लाइफ.
वो अपने जीवन में परमेश्वर को महिमा लाना चाहता था.
If he slipped up and fell somewhere, he'd immediately get up and set it right.
और अगर वो कहीं फिसल कर गिर जाता था वो तुरंत उठकर उसको सही कर देता था.
I'm not saying that we have to be perfect.
मैं ये नहीं कह रहा कि हमें सिद्ध बनना है.
None of us are perfect.
हमें से कोई सिद्ध नहीं है.
We will not be perfect until Jesus comes.
यीशु मसीह वापस आएगा तब तक हम सिद्ध नहीं बनेंगे.
We must press on to perfection.
पर हमें सिद्धता की ओर बढ़ता जाना है.
In Hebrews chapter 6,
इब्रानियों उसके छठे अध्याय में
is a command that very few Christians take seriously.
एक ऐसी आज्ञा है जिसको बहुत कम मसीही लोग गंभीरता से लेते हैं.
Here it says in Hebrews 6 verse 1,
यहाँ इब्रानियों 6 उसके पहले वचन में लिखा है,
Let us leave aside the elementary teaching about Christ and press on to perfection.
आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं.
So, and he says, don't keep on talking about repentance and the early part messages of the Christian life.
और वो कहता है बार बार मन फिराओ और मसीह जीवन के शुरुआती संदेशों के बारे में बात मत करो.
We need to repent all our life. It's true.
हमें अपने जीवन भर मन फिराना है, ये सच है.
But we must not live in the elementary teachings all our life.
पर हमें जीवन भर सिर्फ मूलभूत शिक्षाओं में ही नहीं जीना है.
That's like saying to us, your son, listen, don't just sit in the first standard all the time. I want you to grow up and one day go to college.
ये ऐसे अपने बच्चे को कहना है कि हर समय पहली कक्षा में मत बैठे रहो, मैं चाहता हूँ कि तुम बड़े होकर कॉलेज में जाओ.
Don't you want your children to grow up to get a better education?
क्या आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे बड़े होकर एक अच्छी शिक्षा प्राप्त करें?
You must have the same desire spiritually for yourself and for everyone in your church.
आपके अंदर भी यही इच्छा होनी चाहिए अपने आप के लिए और आपके कलीसिया में हर एक व्यक्ति के लिए.
You know, Jesus wanted everyone to live the life he lived.
यीशु मसीह चाहता था कि हर एक व्यक्ति वो जीवन जिए जो वो खुद जी रहा था.
That's why he sent the Holy Spirit.
इस वजह से उसने पवित्र आत्मा को भेजा.
Many people, when they think of the Holy Spirit, they only think of his gifts.
कई लोग जब वो पवित्र आत्मा के विषय में सोचते हैं तो वो उसके दानों के विषय में सोचते हैं.
I don't know how many gifts of the Spirit Jesus exercised in his first 30 years.
मैं नहीं जानता पवित्र आत्मा के कितने वरदानों का इस्तेमाल यीशु मसीह ने अपने पहले 30 वर्षों में किया.
My guess is it was zero.
मेरा अनुमान है शून्य.
He was filled with the Holy Spirit and the fruit of the Spirit for all 33 and a half years.
वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था और पवित्र आत्मा का फल पूरे 33.5 वर्ष उसने प्रदर्शित किया.
The fruit of the Spirit came after he was anointed when he was baptized and was only there for 3.5 years.
पर पवित्र आत्मा के जो वरदान थे वो सिर्फ उसके पवित्र आत्मा के अभिषेक के बाद ही हुआ जो उसके बपतिस्मा पर था और वो सिर्फ 3.5 वर्षों के लिए था.
That is only 10% of his ministry.
मतलब उसके सेवकाई का सिर्फ 10% हिस्सा.
So, our gifts should constitute 10% of the emphasis we have on the fruit of the Spirit in our life.
और इसलिए हमारे जीवन में जो पवित्र आत्मा के फलों पर हम जोर देते हैं उससे सिर्फ 10% ही जोर हमें पवित्र आत्मा के दानों पर देना है.
How you live every day, that means how you live every day should be 10 times more important than how you preach.
इसका मतलब आप हर दिन कैसे जीते हो, ये आप कैसा प्रचार करते हो, इससे 10 गुना ज्यादा महत्वपूर्ण है.
You seek to improve your preaching, that's good.
अगर आप आपके प्रचार में सुधार लाने की कोशिश करते हो ये अच्छी बात है.
But if you want to follow Jesus, you must seek to improve your life 10 times more than that.
पर अगर आप यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हो तो आपकी ये इच्छा होनी चाहिए कि आपके जीवन को सुधारने की आपकी इच्छा 10 गुना ज्यादा होनी चाहिए.
Patience you have with your wife and children, for example.
आपकी पत्नी और आपके बच्चों के साथ जो आप संयम या धीरज रखते हो.
And God allows so many circumstances in our life to teach us patience.
और परमेश्वर हमारे जीवन में इतनी परिस्थितियां आने देता है ताकि हम धीरज को सीखे.
I don't know whether patience is emphasized sufficiently in Christianity.
मैं नहीं जानता मसीहत में धीरज को पर्याप्त उस पर जोर दिया जाता है या नहीं।
या मेनी पीपल एम्फसाइज प्यूरिटी, दैट इज इंपॉर्टेंट।
हाँ, कई लोग शुद्धता पर जोर देते हैं, वो जरूरी है।
But turn with me to James chapter 1.
पर मेरे साथ निकालिए याकूब की पत्री पहला अध्याय।
He says there, when you encounter, verse 2, James 1 verse 2. When you encounter various trials, consider it as only joy.
याकूब एक उसके दूसरे वचन में वो कहता है, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो।
That's how he begins his letter.
वो अपने पत्री की शुरुआत ऐसे करता है।
Early Christians faced a lot of trials.
क्योंकि पहले के जो मसीही थे वो कई परीक्षाओं का सामना करते थे।
We also face many trials.
हम भी कई परीक्षाओं का सामना करते हैं।
I can certainly say that my ministry has not grown only out of study of the Bible, but through various trials the Lord took me through.
मैं निश्चित कह सकता हूँ कि मेरी सेवकाई सिर्फ पवित्र शास्त्र के अध्ययन से नहीं बढ़ी, बल्कि कई परीक्षाओं से उत्पन्न हुई जिनको प्रभु ने मुझे ले गया।
I faced various trials when I was working in the Navy as a young man.
मैंने कई परीक्षाओं का सामना किया जब मैं नेवी के लिए काम करता था, जब मैं जवान था।
From my senior officers.
मेरे जो वरिष्ठ अधिकारी थे उनके द्वारा।
All because I stood up for Christ.
और सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं मसीह के लिए खड़ा होता था।
And then after I left the Navy, I experienced so many financial difficulties.
और फिर जब मैंने नौसेना छोड़ दी तो मैंने कई आर्थिक परीक्षाओं का सामना किया।
And opposition from many relatives.
और कई मेरे रिश्तेदारों से मैंने विरोध और सताव का सामना किया।
And sicknesses.
और बीमारियों से।
From which the Lord healed me.
जिनसे परमेश्वर ने मुझे चंगा किया।
And religious people took me to court for 10 years because I exposed their wrong doctrines.
और धार्मिक लोग मुझे कोर्ट तक लेके गए क्योंकि मैंने उनके गलत सिद्धांतों को सामने लाया था।
For 10 years.
10 वर्षों तक।
All the way to the Supreme Court.
सुप्रीम कोर्ट तक वो मुझे ले गए।
But I have nothing against them. I love them and I have forgiven all of them.
पर मुझे उनके विरोध में कुछ नहीं है, मैं उनसे प्रेम करता हूं और मैंने उनमें से हर एक को क्षमा किया है।
Did they harm me?
क्या उन्होंने मुझे कोई चोट पहुंचाई?
Not at all. They made me a stronger Christian who had greater faith in God.
बिल्कुल भी नहीं, उन्होंने मुझे और बेहतर और मजबूत मसीह बनाया जिसका परमेश्वर में ज्यादा अटल विश्वास था।
What shall I say to all these people who troubled me in my life?
फिर मैं इन लोगों को क्या कहूंगा जिन्होंने मुझे जीवन में सताया है?
My dear friends, thank you for making me a better Christian.
मेरे प्रिय मित्रों, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे एक बेहतर मसीही बनाया है।
Like Joseph told his brothers.
जैसे यूसुफ ने अपने भाइयों को कहा।
In Genesis.
उत्पत्ति में।
He said, "You meant it for evil what you did to me, but God turned it for good."
उसने कहा, तुम जो करना चाहते थे वो बुराई के लिए था, पर परमेश्वर ने उसको भलाई में बदल दिया।
You sold me as a slave to Egypt, into Egypt.
तुमने मुझे एक दास के स्वरूप में बेच दिया मिस्र में।
But that was God's plan to make me a ruler in Egypt.
पर वो परमेश्वर की योजना थी कि वो मुझे मिस्र देश का शासक बनाना चाहता था।
If you forgive all those who harm you,
अगर आप सबको क्षमा करो जो आपको चोट पहुंचाते हैं,
you love them,
अगर आप उनसे प्रेम करो,
You humble yourself,
और आप अपने आप को नम्र करो,
don't have any bitterness in your heart against anybody,
और किसी के भी खिलाफ आपके मन में कड़वाहट न हो,
I can tell you from my experience,
मैं आपको अपने अनुभव से बता सकता हूँ,
everything you go through will make you a better Christian.
जिस किसी परिस्थिति में से आप होकर गुजरोगे वो आपको एक बेहतर मसीही बनाएगा।
If you don't forgive people,
अगर आप लोगों को क्षमा न करो,
not only you will not grow, you will go to hell finally.
ना केवल ही आपकी उन्नति न होगी पर अंतिम में आप नरक में जाओगे।
You can preach all your life and go to hell.
आप अपने जीवन भर प्रचार कर नरक में जा सकते हो।
Is that possible?
क्या यह संभव है?
It was possible even for the apostle Paul.
प्रेरित पौलुस के लिए भी यह संभव था।
Read 1 Corinthians chapter 9.
हम पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों उसके 9वें अध्याय में।
He says in verse 26.
वो 26 वचन में कहता है,
Very important word for all servants of the Lord.
प्रभु के सारे सेवकों के लिए बहुत जरूरी वचन है।
1 Corinthians 9:26.
पहला कुरिन्थियों 9:26.
I run in such a way, not without aim.
मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ परंतु लक्ष्यहीन नहीं।
27. I discipline my body and make my body my slave.
सत्ताईस वचन, परंतु मैं अपने देह को मारता कूटता और वश में लाता हूं.
He says, I'm not a slave of my body.
मैं अपने शरीर का गुलाम नहीं हूं.
Let me tell you something, that every child of Adam, every man is a slave of his body.
मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, आदम की हर एक संतान, हर एक पुरुष अपने शरीर का गुलाम होता है.
Except those who seriously follow Jesus Christ.
सिर्फ उन लोगों के, उन वो लोग नहीं जो यीशु मसीह का गंभीरता से अनुसरण करते हैं.
He says, I discipline my body and make the body my slave. I don't become a slave of my body.
वो कहता है, मैं अपनी देह को मारकर अनुशासित करता हूं ताकि मैं अपने शरीर को, शरीर का गुलाम न बनूं बल्कि शरीर मेरा गुलाम बने.
In other words, my body does not tell me what I should do. I tell my body what it should do.
दूसरे शब्दों में, मेरा शरीर मुझे नहीं बताता मुझे क्या करना चाहिए, मैं अपने शरीर को बताता हूं उसको क्या करना है.
But that's not true in the people of the world.
पर ये संसार के लोगों के लिए सच नहीं है.
The body says, look at that woman and lust after her.
शरीर कहता है, उस स्त्री के पास देखो और उसके लिए लालसा रखो.
And you obey.
और आप उसकी बात मानते हो.
You're a slave of your body.
आप आपके शरीर के गुलाम हो.
Some dirty picture in a magazine or in the internet, your body says, look at that.
किसी मैगजीन में या इंटरनेट पर कोई गंदा चित्र आता है, आपका शरीर कहता है उसके पास देखो.
And you obey.
और आप उसकी बात मानते हो.
How can you be a servant of the Lord if you are a servant of your body?
कैसे आप प्रभु के सेवक हो सकते हो अगर आप अपने शरीर के गुलाम या सेवक हो?
Your tongue says, reply to your wife like this or reply to that man like this.
आपकी जबान कहती है, आपके पत्नी को ऐसा उत्तर दो या उस भाई को ऐसा उत्तर दो.
In some angry way.
किसी गुस्से के रीति में.
You obey.
और आप उसकी बात मानते हो.
You're obeying your body. How can you be a servant of Jesus?
आप आपके शरीर की आज्ञा मान रहे हो, आप कैसे यीशु मसीह के सेवक हो सकते हो?
And in the same, in the matter of eating food.
खाना खाने के बारे में.
Why did Jesus tell his disciples in one place that you cannot cast out this demon unless you fast and pray?
क्यों यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को एक जगह ये कहा कि तुम इस दुष्ट आत्माओं को तब तक नहीं निकाल पाओगे अगर आप उपवास प्रार्थना न करो तो?
You read that in Matthew 17.
आप उसको मत्ती उसके 17 अध्याय में पढ़ते हो.
And Jesus came down from the Mount of Transfiguration.
जब यीशु मसीह उस रूपांतरण के पहाड़ से नीचे आता है,
that somebody said, I brought my son to your disciples, he could not cast out, they could not cast out the demon.
कोई आकर यीशु को कहता है कि मैं अपने बेटे को तुम्हारे शिष्यों के पास लाया पर वो उस दुष्ट आत्मा को न निकाल पाए.
Jesus in one word cast it out.
यीशु मसीह ने एक ही शब्द से उस दुष्ट आत्मा को निकाला.
Disciples asked, why couldn't we do it? You had given us the authority to do it. Why couldn't we do it?
और शिष्यों ने उससे पूछा, हम उसको क्यों ना निकाल सके? तूने तो हमें अधिकार दिया, फिर भी हम क्यों नहीं निकाल सके?
Matthew 10 had given them authority to cast out demons.
मत्ती 10 में यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को अधिकार दे दिया था कि वो दुष्ट आत्माएं निकाले.
Given us the same authority too.
उसने हमें भी वही अधिकार दिया है.
And if a demon has power over somebody and you can't cast it out, you need to go to the Lord and say, Lord, why?
और अगर एक दुष्ट आत्मा किसी पर सामर्थ जताती है और आप उसको बाहर नहीं निकाल पाते तो आपको प्रभु के पास जाकर पूछना है क्यों?
You read in Matthew 17, Jesus said, it's because you don't fast and pray.
और मत्ती 17 में आप पढ़ते हो कि यीशु ने कहा, क्योंकि आप प्रार्थना और उपवास नहीं करते.
You love food so much that you never fast.
आप खाने से इतना प्रेम करते हो कि आप कभी भी उपवास नहीं करते.
Your body says, love food.
आपका शरीर कहता है, खाने से प्रेम करो.
Never mind if it harms your health. Never mind if you become fatter and fatter and fatter and fatter. But love it and eat it.
वो अगर आपके स्वास्थ्य को हानि पहुंचाता है और आप मोटे और मोटे और मोटे होते जाते हो, कोई बात नहीं, उससे प्रेम करो और वो भोजन खाते रहो.
No, if you are now a slave of your body.
नहीं, अब आप आपके शरीर के गुलाम बन चुके हो.
Paul says in Philippians chapter 3.
पौलुस बताता है फिलिपियों की पत्री उसके तीसरे अध्याय में.
And verse 19.
और उसका 19 वचन.
Philippians 3:19.
फिलिपियों 3:19.
He says some people, their God is their stomach.
वो कहता है कुछ लोग उनका ईश्वर उनका पेट है.
That is like saying food is their God.
वो ये कहना है कि भोजन उनका परमेश्वर है.
Even if they know that some food is not good for their body, they still eat it because they enjoy it so much.
यद्यपि वो जानते हैं कि किसी प्रकार का भोजन उनके शरीर के लिए अच्छा नहीं है, उसके बावजूद वो उसको खाते हैं क्योंकि वो उसमें इतना आनंद उठाते हैं.
There are many preachers who never fasted in their whole life.
ऐसे कई प्रचारक हैं जिन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी उपवास नहीं किया है.
Jesus and the apostles fasted.
यीशु मसीह और प्रेरित उपवास करते थे.
One of the first things I began to do when I was a young Christian.
ये एक पहली बात थी जो मैं करने लगा जब मैं मसीह बन गया.
I said, Lord, I don't want to become the slave of my body.
मैंने कहा प्रभु मैं अपने शरीर का गुलाम नहीं बनना चाहता.
Even when I was working on a ship and I was earning a good salary.
और इसलिए जब मैं एक जहाज पर काम करता था और मैं अच्छी खासी तनख्वाह कमाता था.
In the midst of my work, sometimes I would fast for a whole one or two days.
और मेरे काम के बीच में कभी कभी मैं एक या दो दिन तक पूरा उपवास करता था.
Just drink some liquids, that's all.
सिर्फ कुछ लिक्विड्स पीता था.
Maybe water or some milk and that's it.
थोड़ा थोड़ा पानी थोड़ा दूध बस उतना ही.
Why?
क्यों?
That is not to become spiritual. You can't become spiritual by fasting.
ये इस वजह से नहीं कि मैं आत्मिक बनूं क्योंकि आप उपवास करके आत्मिक नहीं बन सकते.
That is Hinduism.
वो हिंदुइज्म है.
No, I wanted to make sure that I don't become a slave of my body. That's why.
मैं ये सुनिश्चित करना चाहता था कि मैं अपने शरीर का गुलाम न बन जाऊं.
And even though I had a good bed in my ship, I would sleep on the floor sometimes just to toughen my body that I can sleep anywhere.
और यद्यपि मेरे पास एक अच्छा बिस्तर था सोने के लिए उस जहाज पर, उसके बावजूद कभी कभार मैं जमीन पर सोता था ताकि मैं अपने शरीर को अनुशासित करूं कि वो कहीं भी सो पाए.
That discipline in those early days helped me throughout my life.
उन शुरुआती दिनों में उस अनुशासन ने मेरे जीवन भर मेरी मदद की.
So that wherever I traveled, I was happy to eat whatever I get.
ताकि मैं जहां कहीं यात्रा करता था मुझे जो कुछ मिलता था वो खाने के लिए मैं खुश था.
Or some travel I could not get food, okay, that's also fine.
किसी यात्रा के दौरान अगर मुझे खाना नहीं मिले ये भी ठीक है.
Or some place the sleeping arrangement is not comfortable, that's fine.
या कहीं सोने की जो प्रबंधन है वो सही नहीं है, कोई बात नहीं.
Because I had disciplined myself when I was younger.
क्योंकि मैंने अपने आप को अनुशासित किया था जब मैं जवान था.
So, it says here in Philippians 3:19 about some people who made their stomach their God.
और इसलिए फिलिप्पियों 3:19 उन लोगों के बारे में बताता है जिन्होंने अपने पेट को परमेश्वर बना लिया है.
Turn back to 1 Corinthians 9:27.
फिर एक बार आइए पहला कुरिन्थियों 9:27 में.
I tell my body what it should do. My body does not tell me what I should do.
मैं अपने शरीर को बताता हूँ उसको क्या करना है. मेरा शरीर मुझे नहीं बताता मुझे क्या करना है.
You ask yourself.
आप अपने आप से प्रश्न करें.
Do you decide what your tongue should speak, what your eyes should look at?
क्या आप निर्णय लेते हो कि आपके जबान को क्या कहना है, आपकी आंखों को किन बातों को देखना है?
These are two members of our body with which we are tempted regularly.
ये हमारे शरीर के वो दो अंग हैं जिनके द्वारा हम निरंतर प्रलोभित होते हैं.
To look at sinful things, to speak angry words.
पापमय बातों को देखना और गुस्से के शब्दों को कहना.
Then you have become a slave of your body.
फिर आप आपके शरीर के गुलाम बन गए हो.
Then you cannot say to others, follow me as I follow Christ.
फिर आप दूसरों को ये नहीं कह सकते कि मेरे पीछे आओ जैसे मैं यीशु के पीछे चलता हूँ.
And Paul says here,
और पौलुस यहाँ कहता है,
if I do not discipline my body like this, I can preach to everybody and finally be disqualified myself.
अगर इस प्रकार मैं अपने शरीर को अनुशासित न करूं तो मैं सबको प्रचार कर सकता हूं और खुद निकम्मा ठहरूंगा.
What does it mean to be disqualified?
निकम्मा ठहरने का क्या अर्थ है?
I think it means you go to hell.
मुझे लगता है इसका मतलब है कि आप नरक में जाते हो.
When God disqualifies a man, what happens?
जब परमेश्वर किसी व्यक्ति को अयोग्य ठहराता है तो क्या होता है?
There are no classes of accommodation in heaven that we are given a lower class of accommodation.
स्वर्ग में रहने के अलग अलग ऐसे श्रेणियां या वर्ग नहीं है कि हमें एक निचला वर्ग मिल जाएगा.
I think disqualified means you are not in heaven at all.
मुझे लगता है अयोग्य या निकम्मा ठहरने का अर्थ है कि आप स्वर्ग में ही नहीं हो.
You know, there are many people who run in an Olympic race and come first and then they are disqualified saying you did something wrong during the race.
क्या आप जानते हो ओलंपिक्स के दौड़ों में ऐसे कई बार होता है कि कुछ लोग भागकर पहले आ जाते हैं फिर उनको कहा जाता है कि वो अयोग्य है क्योंकि शुरुआत में उन्होंने कोई गलती की है.
And they lose it. Everybody thought they came first.
और वो उसको उससे चूक जाते हैं, सबको लगा कि वो पहले आए हैं.
Somewhere along the race they went out of their track and went into somebody else's track.
उस दौड़ के दौरान कहीं उन्होंने अपने ट्रैक को छोड़कर किसी और के ट्रैक पर वो चले गए. अपने जीवन के अंत में वो पाते हैं कि वो अयोग्य ठहराए गए.
Paul says about that himself.
और पौलुस अपने आप के विषय में ये कह रहा है.
And if Paul had that fear, it's good for us to have that fear too.
और अगर पौलुस के पास ये डर था तो ये अच्छा है कि हम लोग भी इस डर को रखें.
Lord, I want to discipline my body.
प्रभु मैं अपने शरीर को अनुशासित करना चाहता हूँ.
I'm 81 years old, but I still discipline my body today.
मैं 81 वर्ष का हूँ पर आज भी मैं अपने शरीर को अनुशासित करता हूँ.
If I can keep my body fit by controlling what I eat and doing a little exercise.
अगर मैं अपने शरीर को फिट और स्वस्थ रख सकता हूँ, मैं क्या खाता हूँ उस पर नियंत्रण करके और थोड़ी सी एक्सरसाइज करके.
And as a result, I can live one more day on this earth for the Lord.
और इसके परिणाम स्वरूप अगर मैं इस पृथ्वी पर प्रभु के लिए एक और दिन जीवित रहूं तो.
One extra day.
एक अधिक दिन.
Because of my disciplining my body in food and other habits.
मेरे अपने शरीर को भोजन और दूसरे आदतों में अनुशासित करने के परिणाम स्वरूप.
I'm willing to do that. I can be a blessing for one more day on this earth to somebody.
तो मैं वो करने के लिए तैयार हूँ क्योंकि इस पृथ्वी पर किसी की व्यक्ति के लिए मैं एक और दिन आशीष का कारण बनूंगा.
Are you willing for that?
क्या आप उसके लिए तैयार हो?
You have such a passion to bless people for the Lord that you're willing to deny yourself any more, any extent, if you can live one more day for the Lord on this earth.
आपकी ऐसी लालसा है कि प्रभु के लिए आप दूसरों को आशीषित करो कि आप अपने आप को कितना भी अनुशासित करने के लिए तैयार हो ताकि आप एक और दिन जियो.
In Paul, in 1 Corinthians 7, Paul says, you even have to discipline yourself in the area of sex with your wife.
पहले कुरिन्थियों 7वें अध्याय में पौलुस कहता है, अपने पत्नी के साथ यौन संबंध के क्षेत्र में भी आपको अपने आप को अनुशासित करना है.
You read that in 1 Corinthians 7, verse 5.
आप उसको पहला कुरिन्थियों 7 उसके 5 में पढ़ते हो.
A sexual relation with your wife is a holy and excellent thing.
आपके पत्नी के साथ एक यौन संबंध रखना एक पवित्र और अद्भुत बात है.
There's nothing evil about it.
उसमें कुछ बुराई नहीं.
When God created a sexual function in Adam and Eve, it says in Genesis 1:31, God said it is very good.
जब परमेश्वर ने आदम और हवा में उस यौन के अंग को बनाया तो परमेश्वर ने उत्पत्ति 1:31 में कहा कि वो बहुत अच्छा है.
He looked at that sexual function he had made Adam and Eve and he looked at everything and he said it's very good.
और उसने उस यौन के अंग को देखा, यौन के संबंध को देखकर कहा कि ये बहुत अच्छा है.
Outside of marriage it is totally evil.
एक विवाह संबंध के बाहर वो पूरी तरीके से दुष्ट और बुरा है.
It is satanic.
वो शैतानी है.
But inside marriage the sexual function is divine. It is godly.
पर एक विवाह के अंदर वो दिव्य और अलौकिक है.
But even there, he says in 1 Corinthians 7:5, there is a place for discipline.
पर वहाँ भी वो कहता है 1 Corinthians 7:5 में वहाँ भी अनुशासन की एक जगह है.
So there's a place for discipline in food. There's a place for discipline in sleep. There's a place for discipline in sex.
और इसलिए भोजन के क्षेत्र में अनुशासन की जरूरत है, नींद के क्षेत्र में और यौन संबंध के क्षेत्र में.
These are more important than going to a Bible college.
एक बाइबल कॉलेज में जाने से ये चीजें ज्यादा जरूरी है.
The reason I never went to a Bible college in my whole life.
मैं पूरे जीवन में बाइबल कॉलेज नहीं गया उसका कारण ये है.
Even though many people told me when I was a young man I should do it.
यद्यपि कई लोगों ने मुझे बताया जब मैं जवान था कि मुझे जाना चाहिए.
I said two reasons.
मैंने दो कारण दिए.
Why I don't go.
क्यों मैं नहीं जाता.
I said Jesus never sent any of his disciples to a Bible college.
मैंने कहा यीशु मसीह ने अपने किसी भी शिष्य को बाइबल कॉलेज में नहीं भेजा.
There was a Bible college being run in Jerusalem by a man called Gamaliel.
यरूशलेम में गमालियल नामक एक व्यक्ति एक बाइबल कॉलेज चला रहा था.
But Jesus did not go and select any disciples from there.
पर यीशु मसीह ने जाकर एक भी शिष्य को वहां से उसका चयन नहीं किया.
He selected hard-working fishermen from the Lake of Galilee.
उसने कठिन परिश्रम करने वाले मछुआरों को लिया उस झील से.
Or a tax collector like Matthew working in an office.
या मत्ते जैसे चुंगी लेने वाले को एक ऑफिस से उठाया.
So that is the number one reason. Jesus never sent any of his disciples to Bible college, so I don't want to go.
और ये पहला कारण था, यीशु मसीह ने अपने किसी भी शिष्य को बाइबल कॉलेज नहीं भेजा, इसलिए मैं नहीं जाना चाहता था.
Secondly, I said 99% of Christians or more than that cannot go to Bible college and do not go to.
दूसरा मैंने कहा 99% मसीह या उससे भी ज्यादा लोग कभी बाइबल कॉलेज नहीं जा पाते.
How can I be an example to them if I go to Bible college and 99% of them cannot go?
फिर मैं उनके लिए कैसे उदाहरण बन सकता हूँ अगर मैं बाइबल कॉलेज जाता हूँ और उनमें से 99% लोग नहीं जा पाते.
I said, Lord, I want to be an example to all Christians that I can know the Bible without going to a Bible college.
और मैंने कहा प्रभु मैं सारे मसीहों के लिए एक उदाहरण होना चाहता हूं कि मैं बाइबल को जान सकता हूं बिना बाइबल कॉलेज जाए
एंड दैट आई कैन प्रीच गॉड्स वर्ड विदाउट गोइंग टू अ बाइबल कॉलेज
और मैं परमेश्वर के वचन का प्रचार कर सकता हूं बिना किसी बाइबल कॉलेज में जाए
आई विल डू ऑल दीज थिंग्स थ्रू द पावर ऑफ द होली स्पिरिट हुम यू हैव गिवन मी
मैं ये सारी बातों को करूंगा उस पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा जिसे तूने मुझे दिया है
सो व्हेन पॉल सेड फॉलो मी एज आई फॉलो क्राइस्ट
और इसलिए जब पॉलस ने कहा मेरे पीछे आओ जब जैसे मैं यीशु के पीछे चलता हूँ
वी कैन गेट अ पिक्चर इन आवर माइंड
हम अपने मन में एक चित्र पाते हैं
व्हेन आई रीड द बाइबल आई लाइक टू सी पिक्चर्स इन माय माइंड
जब मैं बाइबल पढ़ता हूँ तो मैं अपने मन में चित्रों को देखना पसंद करता हूँ
आई सी जीसस क्लाइंबिंग अप अ वेरी माउंटेन फिल्ड विद स्नो लाइक माउंट एवरेस्ट
मैं देखता हूँ कि यीशु मसीह एक ऐसे पहाड़ पर चल रहा है जो बिल्कुल उस बर्फ से भरा हुआ है जैसे माउंट एवरेस्ट है
I see his footsteps in the snow.
मैं उसके पद चिन्हों को उस बर्फ में देखता हूँ
Completed his entire earthly life, tempted in every way, and reached the top perfect.
उसने अपने पूरे पृथ्वी के जीवन को खत्म किया हर बात में वो परखा गया निष्पाप रहा वो सिद्ध था
Paul looked at those footsteps of Jesus in the snow and put his feet in the same footsteps.
पौलुस ने उस बर्फ में यीशु मसीह के पद चिन्हों को देखा और अपने पैरों को उन्हीं पद चिन्हों पर रखा
He has only climbed maybe 500 or 600 meters or 200 meters.
शायद पॉलस सिर्फ 100 मीटर या 200 मीटर ही ऊपर चढ़ गया है.
Long way from the top still.
अभी भी वो ऊपर शिखर से बहुत दूर है.
But he is following Jesus because he is looking at Jesus' footsteps and putting his feet there.
पर वो यीशु मसीह के पीछे इस वजह से चल रहा है क्योंकि वो यीशु मसीह के पद चिन्हों को देखता है और उसमें अपने कदम रखता है.
I look at myself and I say I haven't even come to 200 meters.
मैं अपने आप को देखकर कहता हूं कि मैं अभी 200 मीटर की ऊंचाई भी नहीं तय कर पाया
I'm only at 30-40 meters on the mountain.
मैं अभी भी 30 या 40 मीटर की ऊंचाई पर हूं उस पहाड़ पर
I see Paul's footsteps.
पर मैं पौलुस के पद चिन्हों को देखता हूं
Who is walking in Jesus' footsteps.
जो यीशु मसीह के पद चिन्हों में चल रहा है
I hear his call, follow me as I follow Christ.
और मैं उसकी बुलाहट सुनता हूं कि मेरे पीछे आओ जैसे मैं मसीह के पीछे चलता हूं
That is why we adopted certain policies in financial matters right from the beginning.
और इसलिए आर्थिक बातों में हमने कुछ सिद्धांतों को अपनाया शुरुआत से.
Which is different from the rest of Christianity.
जो बाकी मसीह जगत से अलग था.
Let me give you Jesus' example in money matters.
मैं पैसे के क्षेत्र में आपको यीशु का उदाहरण देना चाहता हूँ.
Yeah, Jesus was not working as a carpenter in the last 3.5 years of his life.
अपने जीवन के आखिरी 3.5 वर्षों में यीशु मसीह एक बढ़ाई का काम नहीं कर रहा था.
How did he live?
फिर वो कैसे जीता था?
He did not get manna from heaven.
उसको स्वर्ग से तो मन्ना नहीं मिलता था.
He needed money to provide food for himself and for his 12 disciples and some of them were married for their families.
उसको पैसों की जरूरत थी अपने आप के लिए अपने 12 शिष्यों के लिए और उनमें से कुछ उनके परिवार थे उनके लिए भी.
But he never asked anybody for money.
पर उसने कभी किसी से भी पैसा नहीं मांगा.
Not once did he say, "We need some money. We are run short now. Please send us some money."
उसने एक बार भी नहीं कहा कि हमें थोड़ी पैसे की जरूरत है, हमें पैसे की कमी है, कृपया हमें पैसे भेजिए.
It's such a shame that almost every Christian organization are full of beggars like that in India.
ये इतने शर्म की बात है कि हर एक मसीही संगठन ऐसे भिखारियों से भरा है भारत में.
Some of the greatest preachers in the world, I see how they beg for money. Please send us some money.
इस संसार के सबसे बड़े प्रचारक उनमें से कुछ को मैं देखता हूँ कि वो ऐसे भीख मांगते कि हमें कुछ पैसा भेजो
And they say they are following Christ. Where did he ask for money?
और वो कहते हैं कि वो मसीह के पीछे चल रहे हैं मसीह ने कहाँ पैसा मांगा
They are not following Paul. Where did he ask for money?
वे पौलुस के पीछे नहीं चल रहे पौलुस ने कहाँ पैसा मांगा
Do you know there were times when Paul did not have enough money for food?
क्या आप जानते हो पौलुस के जीवन में ऐसे समय थे जब उसके पास भोजन के लिए पर्याप्त पैसा नहीं था
Sometime when you get time, read 2 Corinthians 11.
अगर आपको थोड़ा समय मिले तो कभी दूसरा कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय पढ़िए.
He says there how he went sometimes with hunger and thirst in verse 27.
और 27 वचन में वो कहता है कई बार वो भूख और प्यास में से होकर गुजरा.
Sometimes when he fasted.
ऐसे कुछ समय थे जब वो उपवास करता था.
But this is different. Apart from fasting, sometimes he didn't have food. He wanted to eat, but there was no food.
पर ये उपवास से अलग था कई बार वो खाना चाहता था पर उसके पास भोजन नहीं होता था
He didn't have enough clothes. He was shivering in the cold, it says there.
उसके पास पर्याप्त गर्म कपड़े नहीं थे वो उगाड़े में रहकर उस ठंड में था
अच्छा माइटी अपोस्टल रेस्पेक्टेड बाय हंड्रेड्स ऑफ पीपल कुडंट ही हैव आस्क्ड देम फॉर सम मनी
इतना महान प्रेरित जिसको इतने लोग आदर करते थे, क्या वो उनमें से किसी से पैसा नहीं मांग सकता था?
But he never did it because his master Jesus never did it.
पर उसने ये कभी नहीं किया क्योंकि उसका प्रभु स्वामी यीशु ने ये कभी नहीं किया.
He never sent out a report of his work to anybody in the world.
उसके काम का रिपोर्ट उसने संसार में किसी को भी नहीं भेजा.
One thing I decided from the beginning.
ये एक बात थी जो मैंने शुरुआत से उसका निर्णय लिया था.
I left my job to serve the Lord in 1966.
1966 में मैंने अपनी नौकरी छोड़ी ताकि मैं प्रभु की सेवा करूं.
That is 55 years ago.
वो 55 वर्षों पहले की बात है.
In all these 55 years, I've never sent a report of my work to anybody.
इन सारे 55 वर्षों में मैंने अपने काम की रिपोर्ट किसी को भी नहीं भेजी है.
Never asked anybody for money.
मैंने किसी को पैसा नहीं मांगा है.
Never told anybody about my need.
मैंने कभी किसी को अपनी जरूरत के बारे में नहीं बताया.
In the early days of our Christian life, of my married life, my wife and I struggled a lot.
मेरे विवाहित जीवन के शुरुआती दिनों में मैं और मेरे पत्नी ने बहुत संघर्ष किया.
We did not even have enough money to rent a house.
हमारे पास पर्याप्त पैसा एक घर भाड़े पर किराए पर लेने के लिए भी नहीं था.
So in the beginning, I had to live in one small room that my father gave me to live in his house.
और इसलिए शुरुआती दिनों में मुझे एक छोटे कमरे में रहना पड़ा जो मेरे पिता ने दिया उनके घर में.
It was a humbling thing, but I said, Lord, I will never beg for money. I will never ask for money.
वो एक नम्र करने वाली बात थी, पर मैंने कहा, प्रभु, मैं कभी पैसा नहीं मांगूंगा, उसकी भीख नहीं मांगूंगा.
When you see fit, you will move me out to my house of my own.
जब आप सही समझो तो आप मुझे यहाँ से निकालकर अपने घर में ले जाओगे.
That took 4 years.
और उसको 4 साल लग गए.
The Lord taught me many things through that humbling situation.
और उन नम्र करने वाले परिस्थितियों के द्वारा प्रभु ने मुझे कई बातों को सिखाया.
He was testing me whether I will trust him for my financial needs.
वो मेरी परीक्षा ले रहा था, क्या मैं उस पर भरोसा करूंगा अपनी आर्थिक जरूरतों के लिए.
The result is in all these 55 years, I've never asked anybody for money.
और उसका परिणाम ये है कि इन सारे 55 वर्षों में मैंने किसी से भी पैसा नहीं मांगा.
Why in all our CFC churches, we never take an offering.
इसलिए हमारे सारे CFC की कलीसियाओं में हम कभी कोई ऑफरिंग दान नहीं लेते.
We read that Jesus sat once next to the offering box in the temple where a widow put some money.
हम एक बार पढ़ते हैं कि यीशु मसीह उस मंदिर में उस दान बक्से के बाजू में बैठा.
So we say, okay, we'll put an offering box in the back side of our church if anybody wants to put money.
और इसलिए हमने भी कहा, ठीक है, हम अपने कलीसिया के अंत में उस दान के बक्से को रखेंगे ताकि अगर कोई डालना चाहे तो पैसा डाल पाएगा.
We'll never pass a bag around to everybody to collect money.
पर जो जो बैठे हैं उनके पास हम बैग नहीं ले जाएंगे पैसा इकट्ठा करने के लिए.
Jesus would preach to a crowd of 10,000 people, but he never passed a bag around to them.
यीशु मसीह 10,000 की भीड़ से प्रचार करता था, पर कभी उसने कोई बैग नहीं घुमाया उनके पास.
He never, after his healing ministry, he didn't take a collection for money.
उसके चंगाई की सेवकाई के बाद उसने कभी पैसा नहीं मांगा.
That is all done by today's preachers.
ये सब आज के प्रचारों को द्वारा किया जाता है.
Even Old Testament people like Moses and Jeremiah, they didn't ask people for money.
पुराने नियम के लोग भी, मूसा, यिर्मयाह, उन्होंने लोगों से पैसा नहीं मांगा.
And when Naaman came to Elisha and offered him money freely, Elisha said, "No, thank you. I will not take it."
जब नामान एलिशा के पास आया और उसको मुफ्त में वो पैसा देने को तैयार था, तो एलिशा ने कहा, नहीं, मैं इसको नहीं स्वीकार करूंगा.
Why?
क्यों?
Because Naaman was an unbeliever.
क्योंकि नामान अविश्वासी था.
And in the third letter of John,
और यूहन्ना के तीसरे पत्री में,
in the seventh verse, he says, "We never take money from unbelievers."
उसके सातवें वचन में वो कहता है कि हम अविश्वासियों से कभी पैसा नहीं लेते.
Even if they give it,
वो पैसा हमें दे तब भी.
Sometimes an unbeliever has sent some money to us in CFC church.
कभी कभी CFC कलीसिया में अगर कोई अविश्वासी हमें पैसा भेज देता है,
we don't insult him by returning it.
हम उसका अपमान नहीं करते वो पैसा लौटा कर.
Because we want to draw him to Christ.
क्योंकि हम उसको मसीह की ओर खींचना चाहते हैं.
But we can't use that money for the Lord's work.
पर प्रभु के काम के लिए हम उस पैसे का इस्तेमाल नहीं कर सकते.
So we took a number of books costing that much money and sent him a gift.
और उतने ही किताबों हमने उतने ही पैसे के किताब खरीदे और उसको एक दान दे दिया ताकि उसके पैसों के लिए.
Because we don't want to use an unbeliever's money for God's work.
क्योंकि हम परमेश्वर के काम के लिए एक अविश्वासी का पैसा नहीं इस्तेमाल करना चाहते.
All my 81 years, I've never borrowed one rupee from anybody.
और इन पूरे 81 वर्षों में मैंने एक व्यक्ति से भी एक रुपया भी उधार नहीं लिया है।
I want to follow Paul as he followed Christ.
मैं पौलुस के पीछे चलना चाहता हूँ जैसे वो यीशु के पीछे चलता था।
Romans 13 verse 8 says, owe nothing to anybody except to love one another.
रोमियो 13 उसका 8वां वचन कहता है किसी के भी कर्जदार न रहो इसके सिर्फ उनसे प्रेम करो।
That is a clear command.
और ये एक स्पष्ट आज्ञा है।
Just like it says, don't lust after a woman, it says, don't owe anybody anything.
जैसे लिखा है कि किसी स्त्री को कुदृष्टि से मत देखो वैसा ही लिखा है कि किसी के कर्जदार न बनो।
It's not written that don't borrow money.
और ऐसा नहीं लिखा किसी से पैसा मत लो।
Because sometimes in an emergency, some medical emergency, a poor person may not have money, may have to borrow from some believer.
क्योंकि कोई अचानक परिस्थिति में इमरजेंसी में कोई गरीब व्यक्ति के पास शायद पर्याप्त पैसा नहीं होगा और उसको किसी से पैसा उधार लेना पड़ेगा।
By the grace of God, I've never had to do even that.
परमेश्वर के अनुग्रह से मुझे वो भी नहीं करना पड़ा।
But I realize some people may be in a tough situation, they may need to do it.
पर मैं जानता हूँ कि कुछ लोग बहुत कठिन परिस्थिति में हो सकते हैं और शायद उनको ये करने की समय आ जाए।
It's all right to do it.
ये करना ठीक है।
But the Lord says, return it as soon as possible. Don't remain in debt. That's the meaning here.
पर प्रभु कहता है जितना जल्दी संभव हो वो पैसा लौटा दो तुम कर्जदार न बनो इसका यही अर्थ है।
The command is not don't borrow, but don't remain in debt.
और इसलिए आज्ञा ये नहीं है कि आप उधार मत लो पर आज्ञा ये है कि किसी के कर्जदार मत बनो।
Because the highest would be that you never borrow also.
हाँ सबसे ऊंचा स्तर ये हो सकता है कि आप कभी उधार भी नहीं लेते।
But if in some tough situation you borrow, that's okay. Just repay it as soon as possible.
पर अगर किसी कठिन परिस्थिति में आप पैसा उधार लेते हो कोई बात नहीं जितना जल्दी संभव है उसको लौटा दो।
I remember in my unconverted days I cheated the government of taxes.
मुझे याद है जब मेरा नया जन्म नहीं हुआ था मैंने इस सरकार के जो कर देना होता है उसमें उनको फंसाया था।
I calculated that money and I discovered it was about 4 months of my naval salary. I gave it back.
और मैंने हिसाब लगाया कि जितना टैक्स मुझे भरना था वो मेरे उस समय के तनख्वाह के 4 महीने की तनख्वाह थी मैंने उसको लौटा दिया।
If I had not done that,
अगर मैं वो नहीं करता
I would have been carrying a chain in my leg for the last 55 years.
तो पिछले 55 वर्षों तक मेरे पैर में मानो एक जंजीर होती।
So preaching and building God's church is not just a matter of studying God's word.
और इसलिए प्रचार करना और मसीह की कलीसिया का निर्माण करना ये सिर्फ परमेश्वर के वचन के प्रचार की बात नहीं है।
It is being able to say to your flock, follow my example.
आपको अपनी भेड़ों को ये कहना चाहिए कि मेरे उदाहरण पर चलो।
As I follow Christ.
जैसे मैं मसीह के पीछे चलता हूँ।
And when the Lord gives you grace to follow Christ.
और जब परमेश्वर आपको अनुग्रह देता है कि आप मसीह के पीछे चल सकते हो
Don't let that puff up your head in pride.
इस बात को आपके मन को घमंड से ना भरने दे।
The most important thing we have to learn from Jesus.
यीशु मसीह से सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमें सीखनी है
Tell me, what did Jesus tell us to learn from him?
मुझे बताइए यीशु मसीह ने हमसे क्या कहा कि हम उससे सीखे।
The disciples told him, Lord, teach us to pray.
शिष्यों ने उससे कहा प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए।
But Jesus never said, learn from me how to pray.
पर यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा मुझसे सीखो कैसे प्रार्थना करनी चाहिए।
He never said, learn from me how to preach.
उसने ये नहीं कहा मुझसे सीखो कैसे प्रचार करना है।
Never.
कभी नहीं।
What did he say, learn from me?
उसने क्या कहा उससे सीखने के लिए।
Most important.
सबसे महत्वपूर्ण बात
Matthew 11 verse 29.
मत्ती 11 उसका 29।
This is what I have said, Lord, I want to learn from you.
यही मैंने कहा है प्रभु मैं आपसे ये सीखना चाहता हूँ।
Lord Jesus, I don't want to learn how to preach from you.
प्रभु यीशु मैं आपसे प्रचार कैसे करते हैं ये नहीं सीखना चाहता।
I don't want to learn how to cast out demons or to heal the sick.
दुष्ट आत्माओं को कैसे निकालना है बीमारों को कैसे चंगा करना है ये नहीं सीखना चाहता।
Need arises, you will help me to do all that. That's okay.
जब इन बातों की जरूरत आएगी तो आप मेरी सहायता करोगे ये करने के लिए।
First of all, this is what I want to learn from you.
पर सबसे पहले इस बात को मैं आपसे सीखना चाहता हूँ।
You commanded me to learn from you.
जो आपने आज्ञा दी है कि मैं आपसे सीखूं।
Matthew 11:29.
मत्ती 11:29.
Gentleness and humility.
नम्रता और दीनता।
He said that specifically. Learn from me. my gentleness and my humility.
उसने विशेषतः इन बातों को कहा, मुझसे मेरी नम्रता और दीनता या कोमलता को सीखो.
That is the Bible school I want all of you to enter.
ये वो बाइबल स्कूल है जहां मैं चाहता हूं आप सब प्रवेश करो.
The Bible school that teaches gentleness and humility.
वो बाइबल स्कूल जो हमें कोमलता और नम्रता सिखाती है.
Even if you don't know the Bible well.
यद्यपि आप बाइबल को अच्छे से नहीं जानते.
You can be a first class servant of God even then.
आप उसके बावजूद परमेश्वर के सबसे अच्छे सेवक बन सकते हो.
If you learn gentleness.
अगर आप कोमलता सीखो.
You know, basically we are all very hard people.
मूलभूत तरीके पर हम सब जो है आदम के सारे संतान हम बहुत कठोर लोग हैं.
We are hard on our wives, hard on our children, hard on neighbors, hard on people in the church.
हम अपने पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, कलीसिया के लोगों के साथ बहुत कठोर है.
That area we are 100% unlike Christ.
और उस एक क्षेत्र में हम शत प्रतिशत मसीह के जैसे नहीं है.
That's how we are born.
ऐसे ही हम जन्म, हमारा जन्म होता है.
Born as hard people.
हमारा सबका जन्म कठोर लोग बनकर होता है.
All children are hard. That's why they fight with each other.
सारे बच्चे कठोर होते हैं, इस वजह से ही तो वो दूसरों से लड़ते हैं.
Only one who becomes gentle is the one who decided to learn from Christ.
वो ही व्यक्ति कोमल बनता है जो मसीह से सीखने का निर्णय लेता है.
Have you learned it?
क्या आप इसको सीखे हो?
Can your wife testify that after all these years of marriage, you're a much more gentle person today than when you first got married?
क्या आपकी पत्नी ये गवाही दे सकती है कि आपके विवाह के इतने वर्षों बाद आज आप एक अधिक कोमल व्यक्ति हो जब आपका विवाह हुआ था उसके तुलना में?
And that year by year at your birthday, she can testify that you have become a more gentle person than last year.
और हर साल आपके जन्मदिन के दिन वो गवाही दे सकती है कि पिछले साल के तुलना में इस साल आप ज्यादा कोमल बन गए हो.
That way you speak and the way you behave is more gentle.
जैसे आप बात करते हो, जैसे आप बर्ताव करते हो, उसमें अधिक कोमलता है.
And humility.
और नम्रता.
What does it mean to be humble?
नम्र होने का क्या मतलब है?
It's not hanging our head down and wearing simple clothes.
उसका ये मतलब नहीं कि हम अपने सिरों को लटकाकर बहुत साधारण कपड़े पहने.
There's nothing wrong in wearing good clothes.
अच्छे कपड़े पहनने में कुछ गलत नहीं.
Long as you don't waste money on it.
जब तक कि आप उस पर पैसा व्यर्थ खर्च नहीं करते.
We don't have to dress like John the Baptist.
हमें बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना के जैसे कपड़े नहीं पहनने हैं.
He dressed with animal dress in the wilderness.
वो जानवरों के कपड़े पहनता था उस मरुभूमि में.
But I believe Jesus dressed neatly.
पर मेरा विश्वास है यीशु मसीह अच्छे से कपड़े पहनता था.
In fact, Jesus had one very good dress that soldiers did not feel like tearing it.
और यीशु मसीह के पास
at the cross.
और यीशु मसीह के पास उस क्रूस पर जाते समय एक ऐसा अच्छा वस्त्र था कि वो जो सैनिक थे वो उसको फाड़ना नहीं चाहते थे.
They cast lots saying, who will get this good dress?
उन्होंने चिट्ठियां डाली कि ये अच्छा वस्त्र किसको मिलेगा.
I often thought, Jesus wore such a good dress.
मैं हमेशा सोचता था क्या यीशु मसीह इतना अच्छा वस्त्र पहनता था.
I'm sure he didn't spend a lot of money on it.
मैं निश्चित हूँ कि उसने उस पर बहुत पैसा नहीं खर्च किया होगा.
Almost certain that must have been a gift from his mother and he decided to wear it.
मैं बिल्कुल इस बात में निश्चित हूँ कि उसके माता ने उसको ये तोहफा दिया होगा और इसलिए वो पहनता होगा.
So there are many things we can learn from Jesus' example.
और इसलिए यीशु के उदाहरण से हम कई बातें सीख सकते हैं.
But here is one definition of humility.
पर नम्रता की एक परिभाषा ये है.
Not in the way you dress or the way you speak or the way you hang your head down.
आप कैसे कपड़े पहनते हो, कैसे बात करते हो या अपने सिर झुकाकर कैसे चलते हो, वैसा नहीं.
Or what a simple house you live in.
या कितने साधारण घर में आप जीते हो, वहां नहीं.
Or whether you ride a bicycle instead of a car.
या एक कार के जगह आप एक साइकिल चलाते हो, उसमें नहीं.
Those are not the tests of humility.
ये नम्रता की कोई परीक्षा नहीं
है. Test of humility is seen in Philippians 2:3.
नम्रता की परख हम फिलिपियों उसके दूसरे अध्याय के तीसरे वचन में पाते हैं.
Philippians 2 verse 3.
फिलिपियों की पत्री दूसरा अध्याय तीसरा वचन.
Middle of that verse.
उसके बीच में.
With humility of mind, consider one another as more important than yourself.
दीनता या नम्रता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो.
Read carefully.
ध्यान से पढ़िए.
He is not saying consider everybody as more spiritual than yourself.
वो ये नहीं कह रहा कि आप औरों को अपने से अधिक आत्मिक समझो.
Because it is true that people in my church are not more spiritual than me.
क्योंकि ये सच है कि मेरे कलीसिया में जो लोग हैं वो मुझसे अधिक आत्मिक नहीं है.
Jesus did not look around at all the disciples and say, "Oh, all of you are more spiritual than me."
यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को देखकर ये नहीं कहा कि अरे आप सब तो मुझसे अधिक आत्मिक हो.
That will be a false humility.
वो एक झूठी नम्रता होगी.
Don't tell lies like that.
ऐसे झूठ न कहे.
It says here, consider them as more important than yourself.
यहाँ लिखा है कि आपसे उनको अधिक महत्वपूर्ण समझे.
You meet the president of your country, he may be an unconverted, godless man, but he's more important than you.
आप आपके देश के राष्ट्रपति से मिलते हो, शायद वो ईश्वरहीन और जिसका नया जन्म नहीं हुआ व्यक्ति है, पर वो आपसे ज्यादा जरूरी है, महत्वपूर्ण है.
I am to look at everybody in my church not as more spiritual but more important than me.
और इसलिए मुझे अपने कलीसिया में सब लोगों को देखना है मुझसे अधिक आत्मिक नहीं पर मुझसे अधिक महत्वपूर्ण.
I may be the most spiritual person in that church because then only I can be their leader.
शायद उस कलीसिया का मैं सबसे आत्मिक व्यक्ति हूँ क्योंकि तब ही मैं उनका अगुवा हो सकता हूँ.
You are not the most spiritual person in the church, then somebody else should be the leader of your church.
अगर आप आपके कलीसिया के सबसे आत्मिक व्यक्ति नहीं हो तो किसी और व्यक्ति को अगुवा होना है आपके कलीसिया में.
But we don't lead the church by Bible knowledge, but by spirituality.
पर हम अपने कलीसिया की अगुवाई बाइबल के ज्ञान से नहीं करते पर आत्मिकता से करते हैं.
We don't have an artificial humility where I say, "Oh, I am not as spiritual as other people."
और इसलिए हमारे पास कोई बनावटी नम्रता नहीं है कि अरे मैं दूसरे लोगों के इतना आत्मिक नहीं हूँ.
Jesus didn't have that false humility.
यीशु मसीह के पास ऐसी झूठी नम्रता नहीं थी.
But he did consider all those disciples as more important than him.
पर उसने उन सारे शिष्यों को अपने से अधिक महत्वपूर्ण समझा.
See, John chapter 13.
मेरे साथ निकलिए यूहन्ना उसका 13 अध्याय.
We read here in the first few verses.
और पहले कुछ वचनों में हम पढ़ते हैं.
In the first 10 verses, you read about how he washed the feet of his disciples.
पहले 10 वचनों में हम पढ़ते हैं कैसे उसने अपने चेलों के पैर धोए.
This was the last day of his earthly life before he died.
उसके मृत्यु के पहले उसके पृथ्वी के जीवन का ये अंतिम दिन था.
And usually in Christian work, the last day of a person's preacher's life, he is some director or chairman of something.
और मसीह सेवकाई में हम देखते हैं किसी मसीह सेवक का आखिरी दिन जो होता है वो डायरेक्टर होता है.
They want to become senior elder or senior pastor or chairman or director or archbishops or something like that.
और वो वरिष्ठ अगुए वरिष्ठ पास्टर या ऐसे लीडर सीईओ कुछ होना चाहते हैं.
That's not following Jesus.
ये मसीह के पीछे चलना नहीं है.
That's the way that Lucifer, the devil, went, trying to go up and up and up and up and try to be like God.
ऐसे तो लूसीफर जो शैतान था वो गया, वो ऊपर ऊपर जाना चाहता था, परमेश्वर के जैसे बनना चाहता था.
Jesus went the opposite way and brought salvation.
यीशु मसीह विपरीत दिशा में गया और उसने उद्धार लाया.
From heaven he became a man.
स्वर्ग से वो मनुष्य बना.
And from man he became a slave of others.
मनुष्य से वो दूसरे लोगों का गुलाम बना.
And from a slave, it says he was put outside the camp and killed. The people outside the camp were lepers.
और ऐसा लिखा है कि वो दास से बनकर उस छावनी के बाहर रखकर उसको मारा गया और छावनी के बाहर कोड़ी रहते थे.
And hung on a cross like a criminal, even though he was not a criminal.
और उस क्रूस पर एक अपराधी बनकर वो लटका, यद्यपि वो अपराधी नहीं था.
So see how his whole life he was just going down, 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 right to the lowest level that nobody could be underneath him.
और देखिए उसके जीवन भर कैसे यीशु नीचे 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 जाता रहा ताकि अंत में उसके नीचे कोई रहा ही नहीं.
The only person born on this earth who could choose where to be born was Jesus Christ.
इस पृथ्वी का इकलौता व्यक्ति जो ये चुनाव कर सकता था कि उसका जन्म कहाँ हो, वो था यीशु मसीह.
You and I could not choose where we are to be born.
आप और मैं ये चुनाव नहीं कर सकते थे कि हमारा जन्म कहाँ होगा.
Jesus could choose it from heaven.
यीशु मसीह स्वर्ग से उसको चुन पाता था.
Where did he choose to be born?
पर उसने कहाँ चुनाव किया जन्म लेने का?
In a cowshed with cows and donkeys and other things.
एक तबीले में गाय और बैल उन लोगों के साथ.
In my life, I've never even heard of a beggar being born in a cowshed.
मेरे पूरे जीवन में मैंने किसी भिखारी तक को नहीं सुना कि किसी चरनी या गौशाला में उसने जन्म लिया है.
Voluntarily took the lowest place so that he could help everybody and push them all up.
उसने अपने आप ये निर्णय किया सबसे निचली जगह लेने के लिए ताकि वो दूसरों को ऊपर ढकल सके.
Are you following Jesus?
क्या आप यीशु के पीछे चल रहे हो?
I follow Jesus and where he was born, because that was not our choice.
हम यीशु के पीछे उस क्षेत्र में नहीं चल सकते हमारा कहां जन्म होता है, क्योंकि वो हमारा चुनाव नहीं था.
But we can follow him in the way he served his disciples.
पर जैसे उसने अपने चेलों की सेवा की, वहां हम उसका अनुसरण कर सकते हैं.
Last day of his life, he was not a chairman or a director. He was a washer of feet.
अपने जीवन के आखिरी दिन पर वो कोई चेयरमैन या डायरेक्टर नहीं था, बल्कि वो पांव धोने वाला था.
Look how it is written here.
देखिए यहाँ कैसे लिखा है.
Read the introduction to the washing of the feet.
और पैर धोने का ये परिचय है.
How the Holy Spirit writes this.
पवित्र आत्मा कैसे इन बातों को लिखता है.
John 13 verse 1.
यूहन्ना 13 उसका पहला वचन.
It says here in John 13 verse 3.
और यूहन्ना 13 उसका तीसरा वचन.
Jesus, knowing the Father had given everything in this universe into his hands.
यीशु ने ये जानकर कि इस पूरे विश्व में पिता ने सब कुछ उसके हाथ में दिया है.
Whole universe was his.
पूरा विश्व उसका था.
He had come from earth, come from God, and he was going back to God.
वो परमेश्वर की ओर से आया था और वो परमेश्वर के पास जा रहा था.
Most important person that ever walked on this earth.
इस पृथ्वी पर चलने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति.
To whom God had given the whole universe.
जिसको परमेश्वर ने पूरे विश्व को दिया था.
That is the introduction.
ये परिचय है.
What does he do?
वो क्या करता है?
He takes a bucket of water and washes everybody's feet.
वो एक पानी की बाल्टी लेकर सबके पैर धोता है.
Follow him.
उसका अनुसरण करें.
Paul followed him.
पौलुस उसके पीछे चलता था.
This is what it means to follow Jesus.
ये मतलब है यीशु के पीछे चलना.
You come to the end of your life, my brother.
जब आपके जीवन के अंत में आप आओ मेरे भाई.
What do you want to be known as?
आप क्या चाहते हो कि आप कैसे जाने जाओगे?
Senior elder.
वरिष्ठ अगुए.
Apostle.
प्रेरित.
Prophet.
नबी.
Chairman, director.
चेयरमैन डायरेक्टर.
That is all for worldly people.
ये संसार के लोगों के लिए है.
Seek to go down and down and down and down so that in the last day of your life on earth you are at the feet of your fellow believers.
यत्न करें कि आप नीचे 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 जाते हैं, ताकि अपने जीवन के आखिरी दिन आप आपके सह विश्वासियों के पैरों पर हो.
That's the only way I want to go because that's the way my Savior went.
ये इकलौता मार्ग है जिस पर मैं चलना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा उद्धारकर्ता इस मार्ग पर चला.
Is there a better way to go than that?
क्या इससे बेहतर कोई मार्ग हो सकता है?
That is why we say the new covenant is different from the old covenant.
इसलिए हम कहते हैं नई वाचा पुरानी वाचा से अलग है.
And it is very rare to find Christian preachers like that today.
और आज मसीह प्रचारक, ऐसे मसीह प्रचारक पाना बहुत ही कम है.
In CFC churches, we emphasize the new covenant.
CFC कलीसियाओं में हम नई वाचा पर जोर देते हैं.
The new covenant is different from the old covenant.
नई वाचा पुरानी वाचा से अलग है.
It is not preaching, it is living first.
वो प्रचार करना नहीं है, बल्कि पहले जीना है.
Somebody asked me once, Brother Zach, what is the difference between your church and other churches?
किसी ने मुझसे पूछा, भाई जैक, आपके कलीसियाओं में और दूसरों की कलीसियाओं में क्या अंतर है?
I said, I'm not here to compare my church with any other church.
मैंने कहा, मैं यहाँ मेरी कलीसिया के दूसरे कलीसियाओं से तुलना करने के लिए नहीं हूँ.
And I will not say we are better than other churches. That is for God to decide.
और मैं नहीं कहूंगा कि हम दूसरों से बेहतर है, क्योंकि वो परमेश्वर ही निर्णय कर सकता है.
I will not say there are no hypocrites in our church because we have hypocrites in all our churches.
मैं कभी नहीं कहूंगा कि हमारे पास कोई पाखंडी लोग नहीं है, क्योंकि हमारे सारे कलीसियाओं में पाखंडी लोग हैं.
We are people pressing on to perfection and like Judas Iscariot can creep in, crooks can creep into our church also.
हमारे पास ऐसे लोग हैं जो सिद्धता की ओर बढ़ते जाते हैं, पर जैसे यहूदा इस्कारियोती भी बीच में आ गया, हमारे कलीसिया में भी ऐसे लोग हैं.
If Jesus church had 8% crooks.
अगर यीशु की कलीसिया में 8% धोखेबाज लोग थे.
By that I mean 1 out of 12 was a crook.
उसका मतलब 12 में से एक जो था वो दुष्ट था.
The most perfect church, there'll be 8% crooks.
सबसे सिद्ध कलीसिया में भी 8% लोग ढोंगी होंगे.
So we are not talking about perfection that way.
और इसलिए हम इस प्रकार से सिद्धता की बात नहीं कर रहे.
I say one thing I've seen, there is a difference.
पर मैं कहता हूँ एक बात है जो अलग है.
In all other churches, Sunday is the most important day.
बाकी सारी कलीसियाओं में संडे, इतवार का दिन सबसे महत्वपूर्ण होता है.
They come to sing and preach and meet together.
जहां वो गाने के लिए, प्रचार करने के लिए और एक साथ मिलने के लिए आते हैं.
It is different in our churches.
पर हमारे कलीसियाओं में अलग है.
In our churches, the important day is Monday.
हमारे कलीसियाओं में जरूरी दिन है मंडे.
and Tuesday.
Or Tuesday.
And Wednesday, Thursday, Friday, Saturday.
Or Budhwar, Gurvar, Shukravar, Shanivar.
And Sunday afternoon and evening after you go away from the meeting.
और इतवार के दिन दोपहर में और शाम को जब आप कलीसिया से जाते हो.
I said that is the big difference.
मैं कहता हूँ ये बड़ा अंतर है.
In other words, we emphasize how you live the rest of the week and not how you sing and preach on Sunday morning.
दूसरे शब्दों में हम इस पर जोर देते हैं कि आप कैसे जीते हो उस हफ्ते में, ये नहीं कि आप कैसे गाते हो.
We don't count the offering to see if we are a better church than others.
हम ऑफरिंग या दान को नहीं गिनते ये देखने के लिए कि कहीं हम दूसरे कलीसियाओं से बेहतर है क्या.
But Sunday is not the most important day for us.
क्योंकि इतवार हमारे लिए सबसे जरूरी दिन नहीं है.
The rest of the week is more important, how you live.
बचा हुआ हफ्ता हमारे लिए ज्यादा जरूरी है, आप कैसे जीते हो.
That is the way we are different from many churches.
इस प्रकार से हम कई कलीसियाओं से अलग हैं.
Because that is the new covenant.
क्योंकि ये नई वाचा है.
The old covenant, one day, the Sabbath, Saturday was the most important day.
पुरानी वाचा में एक दिन, वो सब्त का दिन सबसे जरूरी होता था.
On Saturday, don't shout at your wife.
शनिवार के दिन अपने पत्नी पर मत चिल्लाओ.
Saturday, make sure your children are well behaved.
शनिवार पर ये सुनिश्चित करो कि आपके बच्चे अच्छा बर्ताव करते हैं.
And don't do any work, don't even cook.
और कोई काम मत करो, खाना भी मत पकाओ.
The rest of the week, it doesn't matter if you yell and shout and scream and cheat and whatever you like.
बचे हुए हफ्ते में कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चिल्लाओ, झगड़ा करो या धोखा दो, कुछ भी करो.
Lot of Christians are like that, old covenant.
कई मसीह ऐसे ही है पुरानी वाचा के नीचे.
New covenant, it is 7 days a week, or is a Sabbath.
नई वाचा में पूरे हफ्ते के 7 दिन सब्त का दिन है.
Not that we don't do any work.
ये नहीं कि हम कुछ काम नहीं करते.
But we don't do our own will. That is the Sabbath.
पर हम अपने आप की इच्छा नहीं पूरी करते, वो शब्द है.
We say like Jesus, not my will, but your will, Father. That is the Sabbath.
हम यीशु के जैसे कहते हैं कि मेरी इच्छा नहीं वरन आपकी इच्छा पूरी हो पिता, वो है सब्त का दिन.
You read Hebrews chapter 4, it says we must have a perpetual Sabbath in our life.
और आप इब्रानियों 4 पढ़कर देखिए, वहाँ लिखा है कि हमें निरंतर सब्त के दिन में जीना है.
What is the meaning of that?
उसका क्या अर्थ है?
Not that I never do any work.
ये नहीं कि मैं कभी काम नहीं करता.
I can work on Sunday also.
मैं संडे के दिन भी काम कर सकता हूँ.
I can play games on Sunday. I can do examinations on Sunday because I do everything for the glory of God.
मैं संडे के दिन खेल खेल सकता हूँ, मैं कोई एग्जाम लिख सकता हूँ, क्योंकि मैं सारी बातें परमेश्वर की महिमा के लिए करता हूँ.
No day is special for me.
कोई भी दिन मेरे लिए विशेष नहीं है.
Every day I must not do my own will but the will of God.
हर दिन मुझे अपनी इच्छा नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा करनी है.
That is how I keep the Sabbath.
इस प्रकार मैं सब्त का पालन करता हूँ.
Never doing my own will but the will of God.
कभी भी अपनी इच्छा पूरी करना नहीं बल्कि परमेश्वर की इच्छा पूरी करना.
Not perfectly, but to the best of my knowledge of what the will of God is.
सिद्ध होकर नहीं बल्कि मेरे जानकारी के हिसाब से जो सबसे अच्छा परमेश्वर की इच्छा है वो.
And there you can tell other people follow me.
और वहाँ आप दूसरे लोगों को कह सकते हो मेरे पीछे आओ.
I'm not like a full-time worker getting money from other people to support me.
मैं फुल टाइम सेवक नहीं हूँ, पूर्णकालिक सेवक नहीं हूँ, जहाँ मैं दूसरे लोगों को कहता हूँ कि मुझे पैसा दे.
No, I support myself.
नहीं, मैं अपने आप के पैसे कमाता हूँ.
Just like Paul did.
जैसे पॉलस करता था.
So that I'm not dependent on anybody.
ताकि मैं किसी पर निर्भर ना रहूं.
I live on what inheritance my father gave me.
मेरे पिता ने जो मुझे हिस्सा दिया था उसी पर मैं विरासत दी थी, उस पर जीता हूँ.
That limit in a simple way I lived.
और उस सीमा के अंदर बहुत साधारण तरीके से मैं जीता हूँ.
I was quite happy to ride a scooter for 42 years.
42 वर्ष तक मैं बहुत खुश था कि मैं सिर्फ एक स्कूटर चलाऊं.
I used to take 3 children on my scooter. I say I'm quite happy.
मैं 3 बच्चों को अपने स्कूटर पर ले जाता था, मैं कहता हूँ मैं खुश हूँ.
I was not coveting a car by asking people to give me money to buy a car.
मैं कोई लालसा नहीं कर रहा था कि मैं एक कार लूं और इसलिए मैं लोगों से पैसा नहीं मांग रहा था.
I will live according to the ability God has given me.
जो क्षमता परमेश्वर ने मुझे दी है मैं उसके द्वारा जीऊंगा.
When I have little, live with little. God gives me more, like something more.
जब मेरे पास कम है तो मैं उस कम में जीऊंगा, अगर परमेश्वर मुझे ज्यादा दे तो मैं उसमें ज्यादा में जीऊंगा.
But my Sabbath is I never do my own will.
पर मेरा सब्त का दिन है कि मैं अपनी इच्छा पूरी नहीं करता.
That is the new covenant Sabbath.
ये नई वाचा का सब्त है.
And every day of our life must be that Sabbath. I never do my own will.
और हमारे जीवन का हर एक दिन वो सब्त का दिन होना चाहिए जहां मैं अपनी इच्छा नहीं करता.
Paul says I follow Christ and you must follow me.
और पॉलस कहता है मैं मसीह के पीछे चलता हूँ इसलिए तुम्हें मेरे पीछे चलना है.
Can you tell me in one sentence the earthly life of Jesus? In one sentence.
क्या आप मुझे एक वाक्य में बता सकते हो यीशु मसीह का इस पृथ्वी पर का जीवन?
Jesus said it in
यीशु मसीह ने कहा
John 6:38
यूहन्ना 6 उसके 38 में.
In one sentence he described his entire 33 and a half years on earth.
उसने एक ही वाक्य में अपने पूरे सारे 33 वर्षों का वर्णन किया.
John 6:38
यूहन्ना 6:38
I came from heaven what to do what?
मैं स्वर्ग से आया हूँ क्यों?
I came never to do my own will but always the will of him who sent me.
मैं आया ताकि मैं कभी भी अपनी इच्छा नहीं पूरी करूं बल्कि अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करूं.
Old Testament Sabbath was never do any work on the Sabbath.
पुरानी वाचा का जो सब्त था वो ये था कि सब्त के दिन कोई काम न करना.
Don't make a servant do any work and you don't do any work.
अपने किसी सेवक से भी काम मत करवाना तुम खुद भी कोई काम नहीं करना.
That is old covenant Sabbath.
वो पुरानी वचा का सब दिन है.
Covenant Sabbath is you never do your own will any day of your week.
नई वाचा का शब्द का अर्थ है कि आप अपनी इच्छा हफ्ते के किसी भी दिन में नहीं करते.
But do the will of the Father every day of the week.
पर पिता की इच्छा सप्ताह के हर दिन करते हो.
That one sentence Jesus describes his entire life.
उस एक वाक्य में यीशु मसीह अपने पूरे जीवन का वर्णन करता है.
Why was he a carpenter for 30 after the age of 30?
क्यों वो 30 वर्षों के उम्र तक एक बढ़ई था?
Because that was the Father's will.
क्योंकि वो परमेश्वर पिता की इच्छा थी.
He knew the Bible when he was 12.
वो तो 12 वर्ष की उम्र में बाइबल जानता था.
He could have become a full-time worker at 12.
वो तभी पूर्णकालिक सेवा में आ सकता था 12 की उम्र में.
You can't serve the Lord just because you know the Bible.
आप परमेश्वर की सेवा इस वजह से नहीं कर सकते क्योंकि आप बाइबल जानते हो.
But the father said no, work as a carpenter, you need to learn how other people work.
पर पिता ने कहा नहीं एक बढ़ाई की तरह काम करो आपको ये सीखना है कि दूसरे लोग कैसे काम करते हैं.
He did his father's will up to the age of 30.
और उसने 30 वर्षों तक अपने पिता की इच्छा को पूरा किया.
And the father said, quit your job and go and preach.
और फिर पिता ने कहा अपनी नौकरी छोड़कर जाकर प्रचार करो.
Never ask anybody for money.
पर कभी किसी से पैसा मत मांगो.
I will provide for you through somebody or the other.
मैं किसी न किसी के द्वारा तुम्हारी जरूरतें पूरा करूंगा.
And that's how he lived the remaining 3.5 years.
और बचे 3.5 वर्ष वो ऐसे जिया.
I'm sure that some days when he had to go without food because there was no money.
मैं निश्चित हूँ कि उसके जीवन के ऐसे कुछ दिन होंगे जब उसको बिना भोजन के रहना पड़ा क्योंकि पर्याप्त पैसा नहीं था.
I'll give you one example of that.
मैं उसका एक उदाहरण देता हूँ.
There was a time when Jesus went in John chapter 7 from Galilee to Jerusalem.
एक ऐसा समय था यूहन्ना 7 में जब यीशु मसीह गलीली से यरूशलेम गया.
Because John 7 verse 2 it was the feast of tabernacles, feast of booths.
यूहन्ना उसके 7वें अध्याय के 2 वचन में झोपड़ियों का पर्व चल रहा था.
And Jesus went there.
और यीशु वहां गया.
It says here in verse 37, he preached there.
और यहाँ 37 वचन में लिखा है कि वहाँ उसने प्रचार भी किया.
After he finished preaching,
उसके प्रचार के बाद,
what happened?
क्या हुआ?
Verse 53,
53 वचन,
everybody went to their own house.
सब कोई अपने अपने घर चले गए.
Nobody thought of asking Jesus, hey, Jesus, you are come from Galilee, where are you going to stay tonight?
किसी ने यीशु को ये नहीं पूछा कि यीशु तुम तो गलीली से आए हो तुम आज कहाँ रहने वाले हो.
So since nobody asked him, it says in the next verse, John 8 verse 1, he went to the Mount of Olives and slept there.
और क्योंकि किसी ने उससे नहीं पूछा अगले वचन यूहन्ना 8:1 में लिखा है कि वो जैतून के पहाड़ पर गया और वहाँ सोया.
I have often meditated on that and said, Lord, help me to follow your example.
मैंने कई बार उस पर मनन करके कहा है प्रभु मेरी सहायता कर कि मैं तुम्हारे उदाहरण पर चलूं.
I have never had that experience that I'm invited somewhere to preach and nobody asks me, nobody offers me a place to stay.
मुझे ये अनुभव कभी भी नहीं हुआ कि कहीं मुझे प्रचार करने का न्योता मिलता है और कोई मुझे रहने की जगह नहीं देता.
Always people give me a good place to stay.
हमेशा लोग मुझे एक अच्छी जगह देते हैं रहने के लिए.
But they did not treat my Lord like that.
पर मेरे प्रभु के साथ उन्होंने ऐसा बर्ताव नहीं किया.
They ignored him.
उन्होंने उसको नजरअंदाज कर दिया.
But he never had any demands.
पर वो किसी से कोई मांगे नहीं रखता था.
Okay, it's clear weather. I can go and sleep under the trees.
ठीक है, अच्छा मौसम है, मैं जाकर पेड़ों के नीचे सो सकता हूँ.
Lord, make me like that. That is my prayer.
प्रभु मुझे वैसे बना, ये मेरी प्रार्थना है.
Demands on anybody in my church to do anything for me.
मेरे कलीसिया में से किसी भी लोगों से मेरी कोई भी मांग नहीं है कि वो मेरे लिए कुछ करे.
If I go to some new place and they don't care for me, it's okay.
अगर मैं कोई नई जगह जाता हूँ वो मेरी चिंता नहीं करते, कोई बात नहीं.
They don't give me proper food or they don't give me proper place to stay. It's perfectly all right.
वो मुझे अच्छा भोजन नहीं देते, रहने के लिए अच्छी जगह नहीं देते, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैं वहां उनकी सेवा करने के लिए नहीं गया, मैं अपने प्रभु की सेवा करने के लिए गया।
मॉर्निंग व्हेन ही केम बैक,
अगले सुबह जब वो आया,
ही सैट डाउन वर्स 2 एंड स्टार्टेड प्रीचिंग अगेन,
दूसरे वचन में वो बैठकर वापस प्रचार करने लगा।
ही वुड लाइक सम ऑफ टुडेज प्रीचर्स,
अगर वो आज के प्रचारकों के जैसे होता,
ही वुड हैव गिवन अ लिटिल हिंट टू एवरीबॉडी,
तो फिर वो दूसरे लोगों को कोई संकेत देता।
He just said, "Well, last night when I was sleeping under the trees,
वो कहता, कल रात जब मैं पेड़ों के नीचे सोया था,
just to let people know that nobody invited me last night.
सिर्फ ये लोगों को पता चले कि कल रात किसी ने भी मुझे निमंत्रण नहीं दिया।
All these clever preachers today, Jesus was not like that.
आज के सारे जो चतुर प्रचारक है, यीशु इनके जैसे नहीं था।
He slept under the trees as if he was in a 5-star hotel.
वो पेड़ों के नीचे वैसे सोया मानो वो किसी 5-स्टार होटल में है।
The universe belonged to his father and it belonged to him.
पूरा विश्व उसके पिता का था और पूरा विश्व उसका था।
I say, Lord Jesus, help me to be like you.
मैं कहता हूँ प्रभु यीशु मेरी सहायता कर कि मैं तेरे जैसा बनूं।
When you read the Gospels, don't read just the stories like little children do.
जब आप सुसमाचार पढ़ते हो तो जैसे छोटे बच्चे कहानियां पढ़ते हैं, सिर्फ कहानियां ना पढ़े।
Between those verses, say, Lord, let me see your attitude and let me learn that.
उन वचनों के बीच में कहे प्रभु मुझे तेरा रवैया देखना है और मुझे वैसे जीना है।
If you only know the story in the Gospels, you have not allowed God inspiration of the Holy Spirit.
अगर आप सुसमाचारों के सिर्फ कहानियों को पढ़ते हो तो आपने पवित्र आत्मा को अनुमति नहीं दी आपको प्रेरणा देने के लिए।
I'm trying to tell you what I started in the beginning. Jesus did and taught.
और मैं आपको वो बता रहा हूं कि यीशु मसीह ने आरंभ में क्या किया, उसने किया और फिर सिखाया।
Let me conclude with this.
और मैं अंत इससे करना चाहता हूं।
The Gospel of Luke is what Jesus began to do and teach in his physical body.
लूका रचित सुसमाचार है यीशु मसीह ने क्या किया और क्या सिखाया अपने शारीरिक शरीर के साथ।
Acts of the Apostles is what Jesus continued to do and teach through his spiritual body, the church.
प्रेरितों का काम यह है कि यीशु मसीह अपने आत्मिक देह जो कलीसिया है उसके द्वारा क्या करता रहा और क्या सिखाता रहा।
The Acts of the Apostles has not ended.
प्रेरितों के काम का अंत नहीं हुआ है।
The last verse is that the kingdom of God was being preached with all openness and unhindered.
और अंत का वचन कहता है परमेश्वर के राज्य का प्रचार होता रहा और बिना रोक टोक बहुत निडर होकर वो बढ़ता रहा।
There is no amen there. It is not finished.
वहां कोई आमेन नहीं लिखा, उसका अंत नहीं हुआ है।
It has not ended.
क्योंकि उसका अंत ही नहीं हुआ है।
Going on after 2000 years.
वो 2000 वर्षों से चल ही रहा है।
Same thing written in Acts, the last verse of Acts is going on even now.
जो प्रेरितों के काम उसके आखिरी वचन में लिखा है वही बात आज भी हो रही है।
That the kingdom of God is being preached and taught unhindered.
कि परमेश्वर के राज्य का प्रचार किया जा रहा है बिना किसी रोक टोक के।
There may be a lot of opposition.
काफी विरोध हो सकता है, छल सताव हो सकता है,
But God's word goes forth.
पर परमेश्वर का वचन आगे बढ़ता है।
And it is a body that's being built today, not one particular person.
और आज भी एक देह का निर्माण हो रहा है, कोई एक इकलौते व्यक्ति नहीं।
In Christianity, they are exalting some outstanding preacher, or they call people apostles and prophets.
मसीह जगत में एक व्यक्ति को बहुत आगे किया जाता है, उसको प्रेरित या भविष्यवक्ता कहा जाता है।
Particularly in America.
विशेषकर अमेरिका में।
And a lot of people in Africa and India also follow that bad example.
और अफ्रीका और भारत में भी कई लोग इस बुरे उदाहरण के पीछे जाते हैं।
They call themselves apostles so and so, prophets so and so.
वे अपने आप को कहते हैं मैं प्रेरित ये हूँ, मैं भविष्यवक्ता ये हूँ।
Jesus said the greatest prophet until his time was John the Baptist.
यीशु मसीह ने कहा यीशु मसीह के समय तक सबसे महान भविष्यवक्ता यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था।
What did he call himself?
उसने अपने आप को क्या कहा?
Reverend or Reverend Doctor?
Reverend या Reverend Doctor कहा क्या?
No. That is all for worldly people.
ये सब संसार के लोगों के लिए है।
Bishop, Archbishop, Pope, this is all for worldly people.
Bishop, Archbishop, Pope, ये सब संसार के लोगों के लिए है।
What about the greatest prophet, John the Baptist?
सबसे बड़ा नबी यूहन्ना बपतिस्मा।
Follow his example.
उसके उदाहरण के पीछे चले।
He prepared people for the first coming. We are to prepare people for the second coming.
उसने लोगों को प्रभु के पहले आगमन के लिए तैयार किया, हमें प्रभु के दूसरे आगमन के लिए लोगों को तैयार करना है।
Come with me in closing to John chapter 1.
अंत में मेरे साथ निकले यूहन्ना उसका पहला अध्याय।
The people came. It says in John 1:19, this is the testimony of John the Baptist.
यूहन्ना 1:19 में लिखा है कि यूहन्ना की ये गवाही है।
The Jews asked him, "Who are you?"
जब यहूदियों ने उससे पूछा कि तू कौन है?
Verse 19.
19 वचन.
Are you the Christ?
क्या तू मसीहा है?
No, verse 20. I'm not the Christ.
20 वचन. नहीं, मैं मसीह नहीं हूँ.
Are you Elijah? Malachi said Elijah will come before the last day. Are you that Elijah?
फिर वो पूछते हैं क्या तू एलिया है, क्योंकि मलाकी ने कहा कि अंत के दिन में एलिया आएगा, क्या तू वो है?
No, I'm not that also.
वो कहता है नहीं, मैं वो भी नहीं हूँ.
And they said the prophet Moses said in Deuteronomy 18, a prophet will come like me. Are you that prophet?
फिर उन्होंने पूछा क्या तू भविष्यद्वक्ता है, क्योंकि मूसा ने व्यवस्था विवरण उसके 18 में कहा कि एक नबी आएगा, क्या तू वो है?
No, I'm not that.
उसने उत्तर दिया नहीं, मैं वो भी नहीं हूँ.
And who are you?
फिर तू कौन है?
I like his reply.
मुझे उसका उत्तर बहुत पसंद है.
It humbles me and makes me weep sometimes.
वो मुझे नम्र करता है और कई बार मैं उसकी वजह से रोता हूँ.
The greatest prophet said.
सबसे महान भविष्यद्वक्ता ने कहा.
Verse 23.
23 वचन.
I am a voice.
मैं पुकारने वाला एक शब्द हूँ.
I am a voice.
मैं एक आवाज हूँ.
I don't want anybody to see my face. I don't want anybody to know my name.
मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे चेहरे को देखे. मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे नाम को जाने.
I'm so gripped by that. I said, Lord, make me like that. I want to be a voice.
मैं इस बात से इतना जकड़ा हुआ हूँ कि मैं कहता हूँ प्रभु मुझे ऐसा बना, मैं सिर्फ एक आवाज बनना चाहता हूँ.
Nobody needs to know who Zack Poonen is or anything about me.
किसी को भी ये जानने की जरूरत नहीं कि जैक पूनन कौन है या मेरे विषय में कुछ जानकारी की जरूरत नहीं.
I want to be a voice. Telling people, turn to the Lord, prepare the way of the Lord till the end of my life.
मुझे एक आवाज बनना है जहां मैं लोगों को कहता हूं मन फिराओ और प्रभु की ओर मुड़ो अपने जीवन के अंत तक.
Make the way of the Lord straight. Verse 23.
23 वचन. प्रभु के मार्ग को सीधा करो.
I am a voice constantly saying, walk straight, walk upright.
मैं एक आवाज हूं जो हमेशा कहता है सीधा चलो, खराई से चलो.
Humble yourself, be pure.
अपने आप को नम्र करो, शुद्ध बनो.
Love everybody, don't be crooked.
सबसे प्रेम करो, दुष्ट ना बनो.
Only a voice.
सिर्फ एक आवाज.
They need not know my name, they need not see my face.
उनको मेरा नाम जानने की आवश्यकता नहीं, उनको मेरा चेहरा देखने की आवश्यकता नहीं.
Dear brothers,
मेरे प्रिय भाइयों,
you who want to serve the Lord,
आप जो प्रभु की सेवा करना चाहते हो,
remember all that I told you today.
वो सारी बातें याद रखें जो मैंने आज आपसे कही.
And build a body. Not just a congregation of a whole lot of people.
और एक देह का निर्माण करे, सिर्फ कई लोगों के एक congregation ना बनाए.
Where you have get people to link together like the members of our body.
जहां आप लोगों के बीच में उनको ऐसे जोड़ते हो जैसे हमारे शरीर के अंग जुड़े हुए हैं.
Where the glory goes not to you as the elder, but to Jesus Christ.
जहां महिमा आपको नहीं मिलते क्योंकि आप अगुए हो, बल्कि यीशु मसीह को मिलती है.
Not that you built a good church.
ये नहीं कि आपने एक अच्छी कलीसिया का निर्माण किया.
This is glorified.
पर मसीह को महिमा मिली.
That is the most important thing.
ये सबसे महत्वपूर्ण बात है.
Then you'll be able to say at the end of your life, like Paul.
फिर पौलुस के जैसे आप अपने जीवन के अंत में कह सकोगे.
I have finished my course.
मैं अपनी दौड़ पूरी कर चुका हूँ.
I fought a good fight.
मैं अच्छी लड़ाई कुश्ती लड़ चुका हूँ.
I have kept the faith.
मैं विश्वास को रक्षा की है.
God bless you all, dear brothers.
परमेश्वर आप सबको आशीष करे मेरे प्रिय भाइयों.
I don't know all of you, but I want to love all of you.
मैं आप में से सबको नहीं जानता, पर मैं आप सबसे प्रेम करता हूँ.
Let us pray.
हम प्रार्थना करेंगे.
Heavenly Father.
स्वर्गीय पिता.
Help us to honor you in the one earthly life that you give us.
तू हमारी सहायता कर कि हम तेरा आदर कर पाए इस एक जीवन को जो तूने हमें दिया है.
We'll never have an opportunity once we leave this earth to deny ourselves and show our love for you.
इस पृथ्वी को छोड़कर जाने के बाद हमें फिर कभी ये मौका नहीं मिलेगा कि हम अपना इनकार करके तेरे पीछे आए.
We don't want to have any regret in heaven over the way we lived on this earth.
हम स्वर्ग में कोई पछतावा नहीं चाहते कि हम इस संसार पर कैसे जिए.
We don't want to regret in heaven that we live more for money than for God.
हम स्वर्ग में ये पछतावा नहीं करना चाहते कि हम परमेश्वर से ज्यादा पैसे के लिए जिए.
We don't want to have any regret that we didn't discipline our children on earth to bring them up in godly ways.
हमें कोई पछतावा नहीं चाहिए कि संसार में हमें अपने हमने अपने बच्चों को अनुशासित नहीं किया, उनको ईश्वरीय बातों में नहीं बढ़ाया.
We were all born with a sinful nature.
हम सब एक पाप के स्वभाव के साथ जन्मे हैं.
We want to overcome it all before we leave this earth.
इस पृथ्वी छोड़कर जाने के पहले हम उन सारी बातों पर जयवंत होना चाहते हैं.
If we don't make a lot of money,
यद्यपि हम बहुत सारा पैसा नहीं कमाते,
we have overcome the sins in our life.
अगर हमने अपने जीवन में पापों पर जय पाया है,
we believe we would have become rich.
हम विश्वास करते हैं कि तब हम अमीर हो जाएंगे.
That is the true wealth you want us to earn here on this earth.
वो सच्चा धन है जो आप चाहते हो कि हम इस पृथ्वी पर कमाएं.
We overcome every sin.
कि हम हर पाप पर जय पाएं.
Help us, Lord, each one.
हमारी सहायता कर प्रभु हम में से हर एक की.
Help these dear brothers in their localities in difficult circumstances to be faithful to you.
इन प्रिय भाइयों की सहायता कर वो जहां कहीं भी है कठिन परिस्थितियों में, ताकि वो आपके लिए विश्वास योग्य रहे.
Pray in Jesus' name.
यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं.
Amen.
Amen.
Yeah, brother, I thank God for the very encouraging word. I really encouraged. I want to ask one question that I am not able to give first priority to God. Most of the time I am getting distracted by somehow. So I am not able to give first priority to God. So I am somehow it is getting distracted. I am going some other work. I am not first time giving God first praying or reading the word of God.
मैं अपने जीवन में किसी न किसी तरीके से परमेश्वर को पहला स्थान नहीं दे पाता. कुछ ना कुछ आ जाता है, मैं उसको पहला स्थान नहीं दे पाता.
It is all a question of what you feel is most important in your life.
प्रश्न सिर्फ ये है कि आप अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण किस बात को समझते हो.
For example, if you are a married person,
उदाहरण के तौर पर अगर आप विवाहित हो,
and if you have children,
अगर आपके बच्चे हैं,
and if your one of your children is very seriously sick in a hospital,
agar aapka ek bachcha bahut gambhirta se bimar hai, wo aspatal mein hai,
would you make that a priority to go and look after that child and help that child?
Fir kya aapki ye prathamikta ban jati ki aap jaakar uski dekhbhal karte?
Would you ever say, oh, one day I completely forgot to go and see my child?
Kya aap kabhi kehte ki ek din main puri tarike se bhul gaya jaakar apne bachche ko milna?
For 2-3 days I forgot about my child.
2-3 दिन में अपने बच्चे को भूल गया.
You will not forget, even for half a day you will not forget.
आप आधे दिन तक भी नहीं भूलोगे.
Why?
क्यों?
Because that child is so precious to you.
क्योंकि वो बच्चा आपके लिए इतना बहुमूल्य है.
You will sacrifice everything.
आप सारी बातों का त्याग करोगे.
Even if your boss in your office gets angry with you, you will go and look after your child.
आपके दफ्तर में आपका बॉस भी आप पर गुस्सा हो जाए, उसके बावजूद आप जाकर अपने बच्चे की देखभाल करोगे.
When God becomes a priority like that, the same thing will happen.
जब परमेश्वर इस प्रकार से एक प्राथमिकता बन जाता है, फिर वही होगा.
If God is not a priority in your life,
अगर परमेश्वर आपके जीवन में प्राथमिकता नहीं है,
God created us that He should be always our head.
परमेश्वर ने हमारा निर्माण किया ताकि हर समय वो हमारा सिर हो.
Christ will always be number one.
मसीह हमेशा पहले स्थान पर हो.
Then everything will fall into place.
फिर सारी बातें सही जगह पर रहेगी.
Otherwise, other things will be more important.
नहीं तो बाकी बातें ज्यादा जरूरी होंगी.
I've had Christians say, "Oh, brother, I forgot to read the Bible today."
मुझे कई मसीहों ने कहा है कि भाई मैं आज बाइबल पढ़ना भूल गया.
I said, "Was there any day when you forgot to go to office?"
मैं कहता हूँ क्या ऐसा कोई दिन था जब आप ऑफिस जाना भूल गए?
Or you forgot to eat your food?
या आप अपना खाना खाना भूल गए?
Why?
क्यों?
Because if you don't go to office, you don't get money.
क्योंकि अगर आप ऑफिस नहीं जाओगे तो आप पैसा नहीं मिलेगा.
Money was important for you.
पैसा आपके लिए जरूरी था.
Food was important for you.
भोजन आपके लिए महत्वपूर्ण था.
But God, yeah, when I get time, he's in some corner. I will look after that later.
पर परमेश्वर, हाँ, अगर मुझे थोड़ा समय मिलेगा तो मैं उस पर ध्यान दूंगा.
The biggest insult we give to God is not by telling lies.
परमेश्वर का सबसे बड़ा अपमान हम झूठ कहकर नहीं करते.
But by ignoring him.
पर उसको बिल्कुल नजरअंदाज करके.
You treat him like an unimportant servant in some corner of your house.
जब आप उससे ऐसा बर्ताव करते हो, आपके घर के किसी कोने में वो बिल्कुल भी जरूरी नहीं ऐसा दास है.
All people, you know, God treats us the way we treat him.
परमेश्वर हमसे वैसा बर्ताव करते हैं जैसे हम उससे बर्ताव करते हैं.
If you don't give him first priority in your life, you will not be first priority to him either.
अगर आप अपने जीवन में पहली प्राथमिकता उसको नहीं देते तो वो भी आपको पहली प्राथमिकता नहीं देगा.
Do you know this wonderful verse in 1 Samuel chapter 2 verse 30?
क्या आप इस अद्भुत वचन को जानते हो जो पहला शमूएल दूसरे अध्याय के 30 वचन में है?
In the middle of that verse.
उस वचन के बीच में.
God says, "Those who honor me, I will honor."
परमेश्वर कहता है जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूंगा.
You put him first in your life, he will put you first too.
आप अपने जीवन में परमेश्वर को पहला रखो वो भी आपको पहला रखेगा.
Many people ask God to be filled with the Holy Spirit too. Don't put God first in their life.
कई लोग परमेश्वर से मांगते हैं कि वो पवित्र आत्मा से भर जाए जो परमेश्वर को पहला स्थान नहीं देते.
My whole ministry is based on not Bible knowledge alone, being filled with the Holy Spirit.
मेरी पूरी सेवकाई इस बात पर आधारित नहीं है सिर्फ बाइबल के ज्ञान से बल्कि इस पर कि पवित्र आत्मा से हमें भरना है.
And you can be filled with the Holy Spirit if you honor God.
और आप अगर परमेश्वर का आदर करो तो आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो सकते हो.
So put God first in your life.
और इसलिए परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दो. बाकी सारी बातें सही जगह पर रहेगी.
See, this brother is asking how he should support himself because he's been a full-time worker till now.
ये भाई सवाल कर रहे हैं कि उन्होंने अपने आप को अपने आप की जीविका कैसे कमानी है क्योंकि आज तक वो पूर्णकालिक सेवा में थे.
Being supported by
वो एक मिशन के द्वारा उनका सपोर्ट हो रहा था.
See, there's nothing wrong in receiving a gift from others.
लोगों से कोई तोहफा प्राप्त करना इसमें कुछ भी गलत नहीं है.
You cannot be more spiritual than Jesus.
आप यीशु मसीह से अधिक आत्मिक नहीं बन सकते.
How did Jesus support himself the last 3.5 years?
यीशु आखिरी 3.5 वर्ष अपना कैसे अपने आप को सपोर्ट करता था?
Needed money, he did not drop from heaven.
उसको पैसे की आवश्यकता थी वो तो स्वर्ग से नहीं गिर रहा था.
Well, if you read in John chapter 8 verse 3,
हम यूहन्ना 8 उसके 3 में पढ़ते हैं.
That there were some people who contributed to the support of Jesus and his disciples.
ऐसे कुछ लोग थे जो यीशु मसीह और उसके शिष्यों के लिए अपने पैसों से सहायता करते थे.
And Jesus accepted.
और यीशु मसीह ने उनके तोहफे को स्वीकार किया.
So he did not say, no, I won't take from you.
उसने ये नहीं कहा नहीं 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 मैं तुमसे नहीं लूंगा.
He did not ask anybody.
उसने किसी से मांगा नहीं.
He did not give some hint that I have some need.
उसने कोई संकेत नहीं दिया कि मेरी ये जरूरत है.
He did not send a message saying we are doing ministry here, ministry there to try and hint that people should give him money.
उसने कोई संदेश यहाँ नहीं भेजा कि हम यहाँ सेवकाई कर रहे हैं वहाँ सेवकाई कर रहे हैं ये संकेत नहीं दिया कि उनके पैसे की जरूरत है.
Those are all these Indian preachers who are beggars who ask people in America and Germany and all to send them money.
ये सब भारत के वो प्रचारक है जो भिखारी है जो जर्मनी और अमेरिका से उनके लिए पैसा मांगते हैं.
The biggest beggars in India are not the ones you find on the road, but preachers.
इस भारत के सबसे बड़े भिखारी इस सड़कों पर नहीं पाए जाते बल्कि वो प्रचारक है.
Jesus was not a beggar.
यीशु मसीह भिखारी नहीं था.
There's a dignity about a servant of God.
एक परमेश्वर के सेवक का एक आत्मसम्मान होता है गरिमा होती है.
Even when he has nothing, he would rather starve than become a beggar.
जब उसके पास कुछ भी नहीं होता उस तब भी वो भूखा रहेगा इसके बावजूद कि वो लोगों से भीख मांगे.
I remember when our first child was born, my wife and I, we struggled. We did not have money to buy clothes and enough food for it.
मुझे याद है जब मेरे पहले बेटे का जन्म हुआ तो मैं और मेरे पत्नी ने बहुत संघर्ष किया. हमारे पास पर्याप्त पैसा नहीं था उसके लिए कपड़े खरीदने के लिए. पर हमने किसी को भी अपनी जरूरत नहीं बताई.
इफ यू हैव अ फादर इन हेवन हु ओन्स द यूनिवर्स,
अगर आपके पास स्वर्ग में एक पिता है जो इस पूरे विश्व को चलाता है,
यू डोंट गो टू मैन,
फिर हम मनुष्य के पास नहीं जाते.
जीसस सेड व्हेनेवर यू प्रे प्रे लाइक दिस,
यीशु ने कहा जब कभी तुम प्रार्थना करो ऐसे प्रार्थना करो.
Our Father who art in heaven.
हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है.
Then only pray.
उसके बाद ही प्रार्थना करना.
Meaning is, I have somebody there who loves me more than any earthly father.
उसका मतलब मेरे पास कोई है जो मुझे किसी भी पृथ्वी के पिता से अधिक प्रेम करता है.
If I had an earthly father who was wealthy, he will never allow me to starve and be in need.
अगर मेरा पृथ्वी का पिता बहुत ही अमीर होता तो वो कभी मुझे भूखा नहीं रहने देता जरूरतमंद नहीं रहने देता.
My father is in heaven who owns the whole universe.
पर मेरा पिता तो स्वर्ग में है वो इस पूरे विश्व को नियंत्रण में रखता है.
The Old Testament, he says, the silver and gold are mine, God says.
पुराने नियम में परमेश्वर कहता है पूरा सोना चांदी मेरा है.
Jesus never starved.
यीशु मसीह कभी भूखा नहीं मरा.
He never had to beg for food or to get clothes or anything.
उसको खाने के लिए या कपड़ों के लिए कभी भीख नहीं मांगनी पड़ी.
But God did not drop it all from heaven.
पर परमेश्वर ने ये सारी बातें स्वर्ग से नहीं गिराई.
He prompted people to give.
उसने लोगों के मनों को ऐसे हिलाया कि वो पैसा दे.
People give. There's nothing wrong in receiving.
अगर लोग कुछ देते हैं तो उसको स्वीकार करने में कुछ गलत नहीं.
Not because you hint and tell them about your need in very clever ways.
पर इस वजह से नहीं कि आप उनको संकेत देकर कोई बहुत ही चतुराई से उनको आपकी जरूरत बताते हो.
In Paul's time, there were so many people exploiting this and trying to make money from the poor preachers, believers.
Paulus के समय ऐसे कई लोग थे जो इस बात का फायदा उठाकर गरीब विश्वासियों का फायदा उठा रहे थे.
Just like many preachers today.
जैसे आज के कई प्रचारक है.
Paul said, I've got to be different.
कि पॉलस ने कहा नहीं मुझे अलग बनना है.
I will not even take money from people.
मैं लोगों से पैसा भी नहीं लूंगा.
I will support myself.
मैं अपने आप को सपोर्ट करूंगा.
And I want you to see what he says.
और मैं चाहता हूं कि आप देखिए कि वो क्या कहता है.
Turn with me to 2 Corinthians.
मेरे साथ निकालिए दूसरा कुरिन्थियों.
He says in 2 Corinthians chapter 11.
दूसरा कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय.
Verse 7, I preached the gospel to you without charge.
सातवां वचन, मैंने तुम्हें परमेश्वर का सुसमाचार सेठ में सुनाया.
And verse 9, I was not a burden to any of you.
और नौवें वचन में मैंने तुम में से किसी पर भार नहीं डाला.
And verse 9, last part, I will continue not to be a burden to anyone.
और आखिरी भाग नौवें वचन का, मैं आगे भी तुम पर भार नहीं बनने वाला.
But he says, the people in verse 9 middle, some brothers from Macedonia came and gave me something.
पर नौवें वचन में वो कहता है मकेदुनिया के से कुछ भाइयों ने आकर मेरी घटी को पूरा किया.
He didn't ask them for it.
उसने उनसे मांगा नहीं.
The Lord prompted him when they gave, he took it.
प्रभु ने उनको इस प्रकार प्रेरणा दी, उन्होंने जाकर दिया, उसने ले लिया.
In Ephesians, Acts of the Apostles, chapter 20.
प्रेरितों के काम उसका 20 अध्याय.
He was in Ephesus for 3 years.
वो 3 वर्षों तक इफिस में था.
We see that in Acts chapter 20.
प्रेरितों 20 में हम देखते हैं.
But in all those 3 years, it says here in verse 31, 3 years I was preaching to you night and day.
और प्रेरितों 20:31 में लिखा है कि 3 वर्षों तक मैं तुम्हारे बीच में रात दिन प्रचार करता रहा.
And in those 3 years,
और इन 3 वर्षों में,
I did not, verse 33, I did not desire anybody to give me money or clothes for my need.
33 वचन में मैंने किसी से पैसा या कपड़ों का लालच नहीं रखा.
How did I support myself?
मैंने अपना सपोर्ट कैसे किया?
For 3 years.
3 वर्षों के लिए.
I supported myself from working with my own hands.
मैं अपने इन्हीं हाथों से काम करके मैंने अपने आप को सपोर्ट किया.
I not only supported myself, I supported the brothers who were with me.
सिर्फ अपने आप का ही नहीं बल्कि मेरे साथ जो भाई थे उनका भी.
Why did I do that?
मैंने ये क्यों किया?
I showed you by working hard that we must help the others.
ताकि आपको परिश्रम करके मैं ये दिखाऊं कि हमें निर्बलों को संभालना है.
To demonstrate by my life what Jesus taught, it is more blessed to give to others than to receive from others.
अपने जीवन के द्वारा ये प्रदर्शित करना जो यीशु ने सिखाया कि लेने से दूसरों को देना धन्य है.
And towards the end of his life, Paul was in Rome as a prisoner.
और उसके जीवन के अंत में पौलुस रोम में था और वो एक बंदी गृह में था.
And some prisoners, the Roman people would allow them to live in a house and not in a prison.
और कुछ बंदियों को रोमी लोग ये अनुमति देते थे कि वो बंदी गृह के जगह घर में रहे.
But they have to rent their own house.
पर उनको अपने ही घर का किराया भरना होता था.
And Roman soldier will be there to make sure he doesn't run away.
और वहाँ एक रोमी सैनिक होता था ये देखने के लिए कि वो भाग न जाए.
Acts 28 verse 30.
प्रेरितों 28 उसका 30 वचन.
Paul stayed for 2 years in his own rented quarters in Rome.
पौलुस 2 वर्षों तक अपने भाड़े के घर में रहा.
But he never asked anybody for money. He paid the rent himself.
पर उसने कभी किसी से पैसा नहीं मांगा, उसने किराया खुद भरा.
He received an inheritance from his father at that time.
उस समय उसके पिता से उसने थोड़े पैसे प्राप्त किए थे.
We read earlier in Acts 21 and all his sister's son came to visit him.
हम आगे पहले प्रेरितों 21 में पढ़ते हैं कि उसके बहन का बेटा उससे मिलने आया था.
And He got his father's inheritance, which they did not give him earlier.
और उसके पिता के पैसे उसको मिले जो उनको उसको वो पहले नहीं दे रहे थे.
Because he had become a Christian.
क्योंकि वो मसीह बन गया था.
Parents were all Jews.
उसके माता पिता सारे यहूदी थे.
But now he had enough money, he could rent his own house.
पर अब उसके पास पर्याप्त पैसा था, वो अपने किराए का घर ले पाया.
What he didn't ask for it. He didn't ask his parents, please give me my inheritance.
उसने मांगा नहीं, उसने अपने माता पिता से भी नहीं मांगा कि मेरे हिस्से के पैसे मुझे दो.
What I see in Paul's life was God always made sure somehow or the other his need will be met without his becoming a beggar.
पॉलस के जीवन में जिस बात से मैं आशीष पाता हूँ कि परमेश्वर ने हमेशा ये सुनिश्चित किया कि किसी न किसी तरीके से उसकी जरूरत पूरी हो कि वो भिखारी न बने.
But he would never tell anybody his need.
पर वो कभी किसी को अपनी जरूरत नहीं बताता था.
And where he saw that people were taking advantage of his preaching, he himself said, "I'll be an example. I will not take."
और जब उसने देखा कि लोग अंकल कैन यू रिपीट
नो where he saw that other preachers were making money from people.
और जब उसने देखा कि दूसरे प्रचारक लोगों से पैसा कमा रहे थे.
Those places he would not take any money from anyone.
उन जगहों में वो दूसरों से पैसा नहीं लेता था.
But the Philippian believers were good believers. They had a good attitude. So when they sent some money, he took it.
पर फिलिपियों के विश्वासी अच्छा रवैया रखते थे, इसलिए जब उन्होंने पैसा भेजा तो उसने ले लिया.
Read that in Philippians 4.
हम इसको फिलिपियों 4 में पढ़ते हैं.
In Ephesus for 3 years he took nothing from anyone.
पर इफिसस में 3 वर्षों तक उसने किसी से कुछ भी नहीं लिया.
The Corinthians he took nothing even though he was there for 1.5 years.
कुरिन्थियों से उसने कुछ भी नहीं लिया यद्यपि वो वहां 1.5 साल था.
Paul did not live by a rule.
पॉलस कोई नियम से नहीं जीता था.
Don't receive anything from anyone.
कि किसी से भी कुछ नहीं लेना है.
Or receive from everybody. He did not follow either of those rules.
या सबसे सब कुछ लेना है, नहीं, उसने कोई भी नियम का पालन नहीं किया.
He sensed in each case, is it right to receive from this person or not?
उसने हर एक केस में देखा कि इस व्यक्ति से पैसा स्वीकार करना सही है या नहीं.
When his need became greater, the Lord arranged for him to get an inheritance from his father, and his needs were met.
और जब उसकी जरूरत पूरी बड़ी हो गई तो परमेश्वर ने ऐसा समय लाया कि उसके पिता ने उसको पैसा दिया और उसकी जरूरतें पूरी हो गई.
That he could live in the most expensive city in the world, Rome, for 2 years.
ताकि जो सबसे महंगा शहर था उस समय का संसार में रोम, वहां वो 2 वर्षों तक जी पाया.
It's like going and renting a house in Bombay or Delhi for 2 years.
ये ऐसा है कि आप मुंबई या दिल्ली में जाकर 2 वर्षों तक एक घर भाड़े पर लेते हो.
Not depending on anybody.
किसी पर भी निर्भर नहीं होते.
There were many believers in Rome, but he did not take their money. He paid his own rent and stayed there.
रोम में कई विश्वासी लोग थे पर उन्होंने उनसे पैसा नहीं लिया, वो अपने पैसे से जिया.
I see a principle in Paul that I will never take advantage of anyone.
मैं पॉलस के जीवन में एक सिद्धांत देखता हूँ कि मैं किसी व्यक्ति का फायदा नहीं उठाऊंगा.
I will take care of my needs even if I have to live simply.
मैं अपनी जरूरतों को पूरा करूंगा यद्यपि मुझे बहुत साधारण तरीके से जीना पड़े.
I am sure that Paul did not rent a great palace.
मैं इस बात से निश्चित हूँ कि पॉलस ने कोई बड़ा राजमहल भाड़े पर नहीं लिया.
Bought one small one room place for him to stay.
एक छोटा एक रूम का घर लिया जहां वो रह पाए.
He rented it.
उसने उसको किराए पर लिया.
So we see an example in Paul who said, "Follow me as I follow Christ."
और पॉलस में हम एक उदाहरण देखते हैं जो कहता है, मेरे पीछे चलो जैसे मैं यीशु के पीछे चलता हूँ.
There's no law in this.
और इसलिए इसमें कोई नियम नहीं है.
And if people give freely and if they see they have a good spirit, you can receive. Nothing wrong.
और अगर लोग अपने आप दे और अगर आप देखते हो कि उनकी आत्मा सही है तो उनसे स्वीकार करें, कुछ गलत नहीं.
Guided by the Lord and not by people.
पर प्रभु के द्वारा मार्गदर्शन किया जाए, लोगों के द्वारा नहीं.
You trust him, God will guide you.
उस पर भरोसा रखिए, परमेश्वर आपको मार्गदर्शन देगा.
Amen.
Amen.
What I want to say is, as a general principle,
एक सिद्धांत के तौर पर मैं कहना चाहता हूँ
that everybody, every Christian must be a servant of God.
हर एक मसीही को परमेश्वर का सेवक होना है.
सम लाइक जीसस लास्ट 3.5 years वर फुल टाइम सर्वेंट्स.
यीशु मसीह के आखिरी 3.5 वर्षों के जैसे कुछ लोग पूर्णकालीन सेवा में आते हैं.
But first 30 years also he was a servant of his father.
पर पहले 30 वर्ष भी वो अपने पिता का सेवक था.
So we don't say only those who are full time workers are God servants.
और इसलिए हम ये नहीं कहते कि जो पूर्णकालीन सेवा में है वही परमेश्वर के सेवक है.
In the old covenant it was like that.
पुरानी वाचा में ऐसा था.
But to be a full-time servant, you have to have a calling from God.
पर एक पूर्णकालीन सेवा में आने के लिए परमेश्वर के द्वारा आपको एक बुलाहट होनी चाहिए.
Those fishermen in Galilee Lake did not leave their nets before Jesus called them.
वो मछुआरे जो गलील के झील में मछली पकड़ा करते थे उन्होंने तब अपना अपनी जाल नहीं छोड़ी जब जब तक मसीह ने उनका नहीं बुलाया.
Some of the other fishermen who loved Jesus,
बाकी मछुआरे जो यीशु से प्रेम करते थे,
they could not say, oh, Peter and John and all left, so we'll also leave and go and do God's work.
वो ये नहीं कह सकते थे कि अरे पतरस यूहन्ना तो छोड़कर चले गए इसलिए हम भी अपने जाल छोड़कर परमेश्वर के काम में लग जाएंगे.
Peter and John left because Jesus called them.
पतरस और यूहन्ना इस वजह से छोड़कर गए क्योंकि मसीह ने उन्हें बुलाया.
The others, I would say, if you have, Jesus has not called you, remain as a fisherman in the Lake of Galilee. God has not called you.
दूसरों को मैं कहूंगा अगर यीशु ने आपको नहीं बुलाया है तो उस गलील के झील में ही मछुआरों की तरह बने रहे. परमेश्वर ने आपको नहीं बुलाया है.
You can glorify God as a tax collector. If you are called like Matthew, you leave.
आप एक चुंगी लेने वाले होकर भी परमेश्वर को महिमा ला सकते हो. अगर मत्ते के जैसे आप बुलाए जाते हो तो आप छोड़कर आ जाइए.
Many people in India have gone into Christian work without being called by God.
भारत में कई लोग मसीही सेवकाई में तब गए हैं जब परमेश्वर ने उन्हें नहीं बुलाया.
I've seen so many Christian workers, 95% of them had no calling from God.
मैंने कई मसीही सेवकों को देखा है उनमें से 95% लोगों को परमेश्वर से कोई बुलाहट नहीं थी.
See, I have traveled from Kashmir to Kanyakumari.
मैं कश्मीर से होकर कन्याकुमारी तक यात्रा कर चुका हूँ.
From Gujarat to Mizoram, I've traveled.
गुजरात से लेकर मिजोरम तक मैं यात्रा कर चुका हूँ.
And I have seen so many people in Christian work.
और मैंने मसीह काम में इतने लोगों को देखा है.
95% of them had no calling from God.
उनमें से 95% लोगों को परमेश्वर से कोई बुलाहट नहीं थी.
That is why they're always expecting this person to give money and that person to give them money so that they can live.
इस वजह से वो हमेशा अपेक्षा करते फिरते हैं कि ये व्यक्ति मुझे पैसा दे वो व्यक्ति पैसा दे ताकि मेरा गुजारा हो जाए.
In my case, I had a very clear calling from God.
मेरे परिस्थिति में मुझे एक बिल्कुल स्पष्ट बुलाहट थी परमेश्वर के द्वारा.
On the 6th of May 1964,
6 मई 1964,
God called me.
परमेश्वर ने मुझे बुलाया.
My ambition was to go up in the Navy and God said, drop it and follow me.
मेरी महत्वाकांक्षा थी कि मैं नौसेना में ऊपर ऊपर प्रगति करूं और परमेश्वर ने कहा उसको छोड़ दो.
I immediately put in my resignation.
मैंने तुरंत अपना इस्तीफा दे दिया.
But I would not have done that if God had not called me.
पर मैं वो नहीं करता अगर परमेश्वर मुझे नहीं बुलाता तो.
If I had just left my job because other people were leaving their jobs and I wanted to serve the Lord.
अगर मैं अपनी नौकरी इस वजह से छोड़ता क्योंकि बाकी लोग अपनी नौकरी छोड़कर परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं.
I would have been a beggar like others for the last 50 years.
तो पिछले 50 वर्षों तक मैं भी दूसरों की तरह एक भिखारी बनता.
Always waiting, waiting, waiting for somebody to give me some money.
हमेशा इंतजार कर रहा हूँ कि कोई मुझे कुछ पैसा दे दे.
But because God called me, it made a difference in my life.
पर क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बुलाया उसने मेरे जीवन में एक बदलाव लाया.
I say, if don't go into full-time work if God doesn't call you.
इसलिए मैं कहता हूँ कि पूर्णकालीन सेवा में तब तक ना जाए अगर परमेश्वर आपको ना बुलाए तो.
Oh, many people are called by other men, not by God.
कई लोगों को दूसरे मनुष्य बुलाते हैं परमेश्वर नहीं बुलाता.
Oh, they say there's a great need in this state of India. Please go and be a missionary there.
और वो कहते हैं भारत के इस राष्ट्र इस राज्य में कितनी बड़ी जरूरत है इसलिए आप जाकर वहाँ मिशनरी बन जाएं.
Jesus did not go to China or Africa or Europe or anywhere.
यीशु चाइना नहीं गया अफ्रीका नहीं गया यूरोप वो कहीं नहीं गया.
Even though there was a great need there.
यद्यपि वहाँ बहुत बड़ी जरूरत थी.
Remember a simple principle.
एक साधारण सिद्धांत को याद रखिए.
The need is not the call.
जरूरत ये बुलाहट नहीं है.
There can be a great need all over the world, but Jesus stayed in Israel all his life.
पूरे संसार में एक बड़ी जरूरत तो थी पर अपने जीवन भर यीशु मसीह इसराइल में ही रहा.
Only once he went outside the borders of Israel to deliver one Canaanite's demon-possessed daughter.
एक ही बार वो इसराइल के सीमा के बाहर गया जहां एक कनानी स्त्री के बेटी को वो छुटकारा देना चाहता था.
And at the end of his life, he said, "Father, I finished the work you gave me to do."
फिर भी अपने जीवन के अंत में उसने कहा पिता जो काम तूने मुझे दिया है मैंने उसे पूरा किया है.
How many years was he preaching?
कितने साल वो प्रचार कर रहा था?
3.5 years.
3.5 वर्ष.
How many countries did he visit?
कितने देशों में वो गया?
One.
एक.
One small state, smaller than most states in India.
एक छोटा देश जो भारत के कई राज्यों से भी छोटा है.
Can the greatest person who lived on earth say, "I finished my work without traveling the world"?
क्या इस पृथ्वी का सबसे महान व्यक्ति जो कभी जिया है वो कह सकता है मेरे जीवन का काम खत्म हुआ है इसके बावजूद कि वो किसी देश में नहीं गया?
He did not come here to do a lot of work. He came here to do the will of his father.
वो यहाँ बहुत काम करने के लिए नहीं आया, वो यहाँ अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए आया.
So don't operate on the basis of there's a need here, there's a need there, you must go.
और इसलिए इस कारण कोई काम न करे कि यहाँ जरूरत है इसलिए मुझे जाना है.
Has God called you?
क्या परमेश्वर ने आपको बुलाया है?
I see a lot of need all over the world.
मैं पूरे संसार में काफी जरूरत देखता हूँ.
I say God has not called me to meet all that needs.
पर मैं कहता हूँ परमेश्वर ने मुझे नहीं बुलाया कि मैं वो जरूरत को पूरा करूँ.
He has allowed me to be born on this earth to do a particular job.
उसने ये अनुमति दी कि मेरा इस संसार में जन्म हो ताकि मैं एक विशेष काम को पूरा करूँ.
I want to finish that.
मैं बस उसी को पूरा करना चाहता हूँ.
Paul also said, I finished the work which God gave me to do.
पौलुस ने भी कहा जो परमेश्वर ने मुझे काम दिया मैंने उसको खत्म किया है.
Many people who go into full-time work, they don't do what God called them to do.
कई लोग जो पूर्णकालीन सेवा में जाते हैं वो नहीं करते जिसके लिए परमेश्वर ने उनको बुलाया है.
They get into a lot of financial difficulties which they have created for themselves.
वो बहुत आर्थिक समस्याओं में फंस जाते हैं जिसमें वो खुद जिसका निर्माण उन्होंने किया है.
Some people did not know all these truths and they by mistake went into this type of ministries.
कुछ लोग इन सत्य को नहीं जानते थे और इस वजह से वो ऐसी सेवकाइयों में वो गए.
I know people like that who have left it and started earning their own living.
मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने वो सब छोड़कर अपना गुजारा खुद करना शुरू किया है.
God has blessed their work.
परमेश्वर ने उनके काम को आशीष दी है.
So try your best, I would say, to earn your own living.
और इसलिए मैं कहूंगा कि अपनी सबसे अच्छी कोशिश करें कि हम अपने पैसे खुद कमाएं.
Without your asking, if people give you a gift, receive it.
अगर आप बिना मांगे लोग आपको कोई दान देते हैं तो उसको स्वीकार करें.
Don't look for money from anybody.
किसी से भी पैसे की अपेक्षा न रखें.
I don't know all these brothers, but I'm so happy to see their faces.
मैं इन सारे भाइयों को नहीं जानता पर उनके चेहरे देखकर मैं बहुत खुश हूँ.
Dear brothers, be faithful and you will have no regret when Jesus comes back.
मेरे प्रिय भाइयों, विश्वास योग्य बने रहे और जब यीशु मसीह वापस आएगा तो आपको कोई पछतावा नहीं होगा.
Think much about eternity.
अनंत काल के बारे में ज्यादा सोचें.
About what you will think when you're in heaven when you look back on your earthly life.
कि जब आप स्वर्ग में जाओगे तो आप पीछे मुड़कर अपने पृथ्वी के जीवन के विषय में क्या सोचोगे?
I think of that many times.
मैं उसके विषय में बहुत बार सोचता हूँ.
You know, like in the past, we have used our imagination for a lot of filthy things.
हमारे अतीत में हमने अपने कल्पना का इस्तेमाल बहुत गंदी बातों के लिए किया है.
Now let us use our imagination for some good things.
अब आइए हम अपने कल्पना का इस्तेमाल कुछ अच्छी बातों के लिए करें.
Here's one of the things I use my imagination for.
यहाँ एक बात है जिसके लिए मैं अपने कल्पना शक्ति का उपयोग करता हूँ.
Shut my eyes and imagine that Jesus has come back.
मैं अपनी आंखें बंद करके कल्पना करता हूँ कि यीशु मसीह वापस आ गया है.
And he's sitting on his throne.
और वो उसके सिंहासन पर बैठा है.
One by one he's calling people to judge their life.
और एक एक करके वो लोगों को बुला रहा है ताकि वो उनके जीवन का न्याय कर सके.
Like it says in 2 Corinthians chapter 5.
जैसे दूसरे कुरिन्थियों उसके 5 अध्याय में लिखा है.
Then we will all give an account of our lives to the Lord.
दूसरे कुरिन्थियों 5:10 हम अपने जीवन का लेखा प्रभु के सामने देंगे.
One by one they are all going and the Lord is giving them his opinion about how they lived.
एक एक करके वो प्रभु के सामने जाते हैं और प्रभु उनको अपनी राय बताता है कि उन्होंने अपने जीवन को कैसे किया.
Then I picture, my turn comes.
और फिर मैं ये कल्पना करता हूँ कि मेरी पारी आती है.
I imagine I'm standing before the Lord.
मैं कल्पना करता हूँ कि मैं प्रभु के सामने खड़ा हूँ.
And he evaluates my life from the time I was born again.
और वो मेरे जीवन का मूल्यांकन करता है जब से मैंने नया जन्म पाया तब से.
It's a video played of my whole life.
और मेरे पूरे जीवन का मानो एक वीडियो वहाँ चल रहा है.
All the sins I confessed are blotted out from the video. They don't come there.
सारे पाप जिनका मैंने अंगीकार किया वो वहाँ से मिटा दिए गए, वो इस वीडियो में नहीं दिखते.
Since I confessed every known sin, no sin of mine is there in the record.
जो पाप मैं जानता था मैंने उसका अंगीकार किया है, वहाँ उस रिकॉर्ड में एक भी पाप नहीं है.
Only the good things are left.
सिर्फ अच्छी बातें उस रिकॉर्ड में रह गई है.
How good God is.
परमेश्वर कितना अच्छा है.
But then it's not just doing good things.
पर फिर सिर्फ ये नहीं कि हम अच्छी बातें करें.
And the Lord tells me, this was the plan I had for your life from the time you were converted.
पर परमेश्वर मुझे दिखाता है कि तुम्हारे नए जन्म के बाद तुम्हारे जीवन के लिए मेरी ये इच्छा थी.
Every day of your life was planned by me, as was written in Psalm 139 and verse 16.
भजन 139 उसके 16 में जिस प्रकार लिखा गया है, तुम्हारे जीवन के हर दिन के लिए मेरी एक योजना थी।
And I, as I'm imagining myself, I want him to be able to say to me, you lived according to that plan.
और जैसे मैं कल्पना कर रहा था, मैं चाहता हूं कि वो मुझे कहे कि तुम उस योजना के अनुसार जिए।
You made many mistakes.
तुमने कई गलतियां की।
But you repented and you learned something from it.
पर तुमने मन फिराया और तुम उन गलतियों से कुछ सीखे।
The only one who lived without mistakes was Jesus himself.
इकलौता व्यक्ति जो बिना गलतियों के जिया वो था यीशु मसीह खुद।
Paul started following the Lord at the age of 30.
पौलुस प्रभु का अनुसरण करने लगा 30 वर्ष की उम्र में।
He murdered people before that.
उसके पहले उसने लोगों का खून किया था।
And by the time he was 67 years old, he was dead, killed.
और जब वो 67 वर्ष का हो गया, तब वो मार दिया गया।
But he says, I finished my work.
पर वो कहता है, मैंने अपने जीवन के काम को पूरा किया।
He made some mistakes.
उसने कुछ गलतियां की।
But they were forgiven because he repented.
उसने क्षमा प्राप्त की क्योंकि उसने अंगीकार किया।
And he finished his course.
और उसने अपनी दौड़ पूरी की।
I imagine in my mind, I say, Lord, I want you to be able to say to me, well done, good and faithful servant.
और मैं अपने मन में कल्पना करता हूँ कि प्रभु, मैं चाहता हूँ कि तू मुझसे कहे, तूने अच्छा काम किया है, एक अच्छे और भले दास।
I don't care what people call me, the devil or false prophet or false teacher. It doesn't make any difference to me.
मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग मुझे शैतान कहे, झूठा नबी, झूठा शिक्षक कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।
Final day, I want you to say to me, well done, good and faithful servant.
अंतिम दिन पर मैं चाहता हूँ कि तू मुझसे कहे, हे विश्वास योग्य और भले दास, तूने अच्छा किया।
Every day, I wake up thinking of that.
हर दिन मैं उठता हूँ ये सोचते हुए।
I want you to say that to me in the final day, Lord.
मैं चाहता हूँ कि अंतिम दिन प्रभु तू मेरे बारे में ये कहे।
So I want to encourage all of you.
और इसलिए मैं आप सबको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ।
Whatever sin you have confessed is blotted out. God will not remember it anymore.
जिस किसी पाप को आपने अंगीकार किया है, वो मिटा दिया गया है, प्रभु उसको याद भी नहीं करेगा।
Now be faithful.
पर अब विश्वास योग्य रहे।
And live according to the light you have.
और जो ज्योति आपने पाई है, उसके अनुसार जिए।
You are in second standard. God does not ask you to live at the level of somebody who is in tenth standard.
अगर आप दूसरी कक्षा में हो, तो प्रभु ये अपेक्षा नहीं करता कि आप किसी और के जीवन और के स्तर का जीवन जिए जो दसवीं कक्षा में है।
He will not ask you to live according to the light I have. He'll ask you to live according to the light you have.
वो आपको ये नहीं कहेगा कि आप उस ज्योति के अनुसार जियो जो मैंने प्राप्त की है, वो आपको कहेगा वैसे जियो जो ज्योति आपने प्राप्त की है।
A second standard student gets second standard question paper in his examination.
दूसरी कक्षा के विद्यार्थी को दूसरी कक्षा की ही प्रश्न पत्रिका मिलती है।
When he goes to third standard, he'll get a more tougher paper.
जब वो तीसरी कक्षा में जाता है, तो उसको और कठिन प्रश्न पत्रिका मिलेगी।
Compare yourself with other people.
अपने आप की तुलना दूसरे लोगों से न करें।
So they're younger than you or older than you.
जो आपसे जवान है या जो आपसे बड़े हैं।
You answer the question paper God gives you yourself because He knows what class you're in.
जो प्रश्न पत्रिका परमेश्वर खुद आपको देता है, उसी पर ध्यान दे, क्योंकि वो जानता है कि आप किस कक्षा में हो।
Expects you to live only according to the light you have.
वो अपेक्षा करता है कि आप उस ज्योति के अनुसार जिए जो आपको प्राप्त हुई है।
Must have a passion to understand more of God's ways.
आपके अंदर ये तीव्र इच्छा होनी चाहिए कि आप परमेश्वर के मार्गों को और अच्छे से समझे।
The Lord has given me so many revelations of Himself and His Word in the last, especially the last 50 years.
परमेश्वर ने मुझे अपने आप के और उसके वचन से ऐसे अद्भुत प्रकटीकरण दिए, विशेषकर आखिरी 50 वर्षों में।
But I'm not happy still.
पर मैं आज भी उससे खुश या संतुष्ट नहीं हूँ।
I'm happy, but I'm not satisfied.
मैं खुश हूँ, मैं संतुष्ट नहीं हूँ।
I want more.
मैं अधिक चाहता हूँ।
The knowledge of God is so vast, I want to say more, I press on and more to perfection.
क्योंकि परमेश्वर का ज्ञान इतना बड़ा है, मैं आगे आगे सिद्धता की ओर बढ़ते जाना चाहता हूँ।
God is my witness, I do not compare myself with anybody.
परमेश्वर मेरा गवाह है, मैं अपनी तुलना किसी और व्यक्ति से नहीं करता।
I don't see whether I'm better than somebody or worse than somebody, that's not my business.
मैं ये नहीं देखता कि मैं किसी से बेहतर हूँ या किसी से बुरा हूँ, ये मेरा काम नहीं है।
Till the end of my life, I will think of myself as a sinner who was saved by the grace of God.
मेरे अंत जीवन के अंत तक मैं यही कहूंगा कि मैं एक पापी था जो परमेश्वर के अनुग्रह द्वारा उद्धार पाया।
That is what I say today, and that's what I say till the end of my life.
वही मैं आज कहता हूँ, मेरे जीवन के अंत तक मैं यही कहूंगा।
Please stop comparing yourself with others.
अपने आप की तुलना दूसरों से करना रोक दीजिए.
Don't try to have somebody else's ministry.
दूसरों की सेवकाई प्राप्त करने की कोशिश न करें.
Lord, what is my function in the body?
प्रभु, इस देह में मेरी सेवकाई क्या है?
Maybe you have not called me to be a tongue or an eye or a ear.
शायद आपने मुझे एक जबान, एक आंख या एक कान होने के लिए नहीं बुलाया.
Maybe you called me to be a little finger.
शायद आपने मुझे बुलाया कि मैं एक छोटी उंगली बने रहूं.
Or not even a finger, just a nail in this little finger. That's your calling.
शायद छोटी उंगली भी नहीं, इस छोटी उंगली का एक नाखून होना मेरी बुलाहट है.
Be happy with that.
उससे खुश रहे.
Is a nail important or not?
क्या नाखून जरूरी है या नहीं?
When you feel scratchy, what is the part of your body that helps you?
जब आपको खुजली होती है तो आपके शरीर का कौन सा अंग आपके काम में आता है?
Not your eyes or your tongue.
आपकी आंखें या आपका जबान नहीं.
These nails only give you relief.
ये नाखून ही है जिसके द्वारा आपको आराम मिलता है.
Learn from that even if you are the smallest member in the body of Christ, you got a function.
इससे सीखे कि आप मसीह के देह के सबसे छोटे भी अंग क्यों ना हो, आपकी एक सेवकाई है.
Don't compete with anybody.
किसी से प्रतियोगिता न करें.
Don't try to show you're better than somebody else.
ये दिखाने की कोशिश न करें कि आप किसी और से बेहतर हो.
Lord, whatever you call me to be in the body of Christ, I want to be that. That's all.
प्रभु, मसीह की देह में तूने मुझे जो कुछ होने के लिए बुलाया है, मैं बस वही बनना चाहता हूँ.
Life will be a peaceful life every day.
जीवन आपके लिए बहुत शांति भरा होगा हर दिन.
I pray that will be true for all of you.
मैं प्रार्थना करता हूँ कि यह आप में से हर एक के लिए सच हो जाए.